फैक्टर्स ऑफ चेंज में हमने एक फैक्टर देखा है जियोग्राफी, आज हम देखेंगे रेट, यानी कि तारीख के धारे को तब्दील करने का एक फैक्टर जो है वो जियोग्राफी है, जियोग्राफिक।
लेकिन ये फलसफियाना वाला तो कम्प्लीट नहीं हुआ था कि तारीख का फलसफियाना तनाजुर जो है वो इक्कीस सेकंड के तनखीहात मुतय्यन करता है।
मैंने ये कहा था कि पहले हम पांच फैक्टर्स ऑफ चेंज देखेंगे, उसके बाद फिर हम चेंज के ऊपर आएंगे कि चेंज इन इटसेल्फ क्या है। अभी हम ये बता रहे हैं कि चेंज किन वजूहात से पैदा होती है और उन पांच वजूहात को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक वजह हमने देखी थी जियोग्राफी, यानी कि हिस्टोरिकल प्रोसेस को तब्दील करने में जियोग्राफी क्या रोल प्ले करती है। दूसरी जो है वो हम देखेंगे रेस, जो आज हम देखें। मैं जरा पानी पी, ठंडा पानी।
ये जो आपको किताब दी गई है तो आप पढ़िएगा, छोड़ी हुई किताब है या आधे घंटे में आप पढ़ सकती हैं, मतलब इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो ये अच्छे जो सवालात कर रहे हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, उनसे उतार लेकर मतलब इस पर आपको एक असाइनमेंट जो है करना होगा।
कुछ लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री में कुछ नस्लें होती हैं इंसानों की जो तारीख के धारे को बदलती हैं, पलटती हैं, लिहाजा तारीख में तब्दीली जो है वो लीड करती हैं कुछ रेसेस, हिस्टोरिकल प्रोसेस को लीड करती हैं, गवर्न करती हैं रेसेस। जैसे ज्यूस यानी कि जो भी रेस बेस्ड इंटरप्रिटेशन होती है कलेक्टिविटी की, कि भाई आप उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप वो नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद हड्डी और खून के ऊपर होती है, तो आपकी तो है ही नहीं वो हड्डी और खून, तो आप नहीं हो सकते। लिहाजा आप क्या करो, आप उस रेस को फॉलो करो, तो मास्टर रेस होंगे, कुछ मास्टर वो होंगी नेशंस, और बाकी जो होंगी वो उनको फॉलो करेंगे। तो इंसानियत की भलाई और बेहतरी इसी में है कि उन रेसेस की बरतरी को कबूल कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरिकली डिटर्मिंड है, तारीख से डिटर्मिंड होता है कि वो ही लीड करें। वो लीड क्यों करें? इसलिए कि कोई दूसरा लीड कर नहीं सकता, वो सुपीरियर रेस है। जैसे ज्यूस का ये सवाल, इट कैन नॉट बी ज्यू, क्यों? फ्लैश और ब्लड के ऊपर है उसकी भूमिका, तो अगर फ्लैश और ब्लड के ऊपर है तो अगर तुम कन्वर्ट भी हो जाओ, जुडाइज्म को इख्तियार भी कर लो, तुम्हारी हड्डी और खून तो वो नहीं है, तो फिर तुम नहीं हो सकते।
फ्रेंड ऑफ ज्यू होंगे,
हाँ फ्रेंड ऑफ ज्यू होंगे, या आप एक दूसरी सतह के ज्यू होंगे, लेकिन आप उस सतह पे पहुंच नहीं सकते क्योंकि वो रेशियली केपेबल नहीं है। आप इसी तरीके से ये उसकी रिलीजियस शक्ल है, जैसे ब्राह्मण है या ज्यूज, दोनों जो हैं वो फ्लैश और ब्लड के ऊपर बेस करते हैं, यानी कि आप हिंदू हो नहीं सकते। और आगे मैं हिंदू हो जाता हूँ तो चलो हम लोग तो हो सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे अच्छा तो हमने सातवीं आठवीं नवीं रेस के अंदर हिंदू ही थे, तो फिर हिंदू ही थे, तो फिर हिंदू ही हो तुम, तो ये मुसलमान का क्या मतलब है? एलिनेशन का शिकार थे, जो शुद्धि तहरीक और ये वो जो थी वो लोग, जाहिर है कि हिंदुइज्म में कन्वर्जन नहीं हो सकता, कैन नॉट कन्वर्ट टू हिंदू, तो वो शुद्धि तहरीक वगैरह में यही कोशिश की गई थी कि आप दोबारा से वापस आते हैं अपनी असल भी नहीं, आपकी हड्डी और खून तो वही है। लेकिन ये रिलीजियस शक्लें उसकी, और दूसरी जो है नॉन रिलीजियस शक्लें जैसे जर्म या रशियंस, तो वो आप कहते हैं कि ये सुपीरियर रेस है, ये मार्शल रेस है, तो आप इसको फॉलो करें। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जो है वो तारीख के धारा तारीख के साथ आप ज्यादती होगी कि जिसको रूल करना है मार्शल रेस है वो नीचे चली गई है, डोमिनेट हो गई, तो अल्टीमेट विक्ट्री उसी की होगी और वही तारीख के धारे को आगे बढ़ाएगी। तो तारीख जो है वो उस रेस के कंपेटिटिव रिलेशनशिप्स की बुनियाद पर जांची और परखी और समझी जाएगी, और तारीख में जो भी तब्दीली होंगी उसका रेफरेंस पॉइंट वो रेशियल डोमिनेशन या रेशियल सप्रेशन की तारीख होगी। तो अगर रेसेस जो हैं, अब अगर फर्ज किया कि आप इस मार्शल रेस के तस्वूर को इग्नोर कर दें, जो कि जाहिर है कि बहुत सारे बड़े हिस्टोरियन ने किसी ने भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन ये कि रेशियल फैक्टर जो है वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, रेशियल ट्रांसफॉर्मेशन, रेशियल इंटरेक्शन और उसके नतीजे में नई रेसेस का तख्लीक पाना और ताकतवर होना, यानी कि ये एक बजाते खुद एक हिस्टोरिकल प्रोसेस को तब्दील करता है। मसलन ये कि जैसे आपको पता है कि मुसलमानों के अंदर जब अरब वर्ल्ड से वो बाहर निकले हैं, पर्शियंस के साथ उनका एनकाउंटर हुआ है, तो उसके नतीजे में प्रॉब्लम्स पैदा हुए मुसलमानों के अंदर, और फिर ये कि अरब और नॉन अरब की डिस्टिंक्शन को बहुत एक्सप्लॉइट किया और बहुत इसको बहुत बढ़ावा दिया गया, और इसकी बुनियाद पर आपने कई कई तरह की इंटरप्रिटेशन। तो ये जो रेशियल फैक्टर होता है वो कि आप इस बात को अगर ये नहीं भी मानते रेशियल सुपीरियरिटी को एक अल्टीमेट फ्रेमवर्क के तौर पे नहीं मानते, उसके बावजूद ये तारीख के धारे को मुतासर करता है रेशियल फैक्टर, और उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। यानी कि इमाम ने खुदून का जो एनालिसिस है उसके अंदर सबसे ज्यादा वो वैल्यू करते हैं उमैयाड्स को, इसलिए कि उन्होंने जैसी हुकूमत की बकौल इमाम खुलदून वैसी कोई भी नहीं कर सका, और उसकी वजह ये थी कि वो क्लैंग एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग थी उमैयाड्स की, यानी कि उमैयाड ने कि जो रूल है उसे बहुत सारे लोग नस्ल का रूल कहते हैं, नस्ल का रूल नहीं, वो कबीले का रूल है, वो ट्राइब है। ट्राइब अब अगर नस्लन देखा जाए तो हाशमीज भी अरब है और उमवी भी है अरब हैं, तो दोनों अरब भी हैं और दोनों कुरैश भी हैं, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कोई नस्ल रूल कर रही है। और बहुत सारे लोगों ने इसे उमैयाड के रूल को कहा ये नस्ल हुकूमत, नस्ल नहीं है, वो सब अरब हैं। हाँ, लेकिन जब अब्बासी आए पावर में तो अब्बासियों ने पावर में आने के लिए बुनियादी तौर पर जो डिस्टिंक्शन ली वो यही ली कि भाई ये नॉन अरब्स को रूल में शामिल नहीं करते, नॉन अरब्स को क्यों नहीं शामिल करते, उमियों ने नहीं शामिल किया, अब्बासियों ने शामिल किया, अब्बासियों ने शामिल किया तो रियासत तीन टुकड़ों में बढ़ गई, सेंट्रल जो अफ्रीका था वो हाथ से निकल गया, स्पेन हाथ से निकल गया अब्बासियों के और तीन पॉकेट बन गए, और बाद में सेंट्रल अफ्रीका से ही आकर जो है फातिमियों ने कब्जा किया, तो पावर पॉकेट वीक हो गया उनका ट्राइब की वजह से। तो बहरहाल ये कि नस्ल में को जिस तरह देखा जाता है वो फ्लैश एंड ब्लड के ऊपर है, और वो बुनियादी तौर पर एक फॉर्म कंस्ट्रक्ट करे तो आमतौर पर उसे रेस के तौर पे लिया जाता है। ट्राइबल फ्रेमवर्क के अंदर एक ही फैमिली, यानी कि कई फैमिलीज होती हैं, और वो फैमिली अगर बड़ी हो जाए तो एक ट्राइब बन जाता है, तो उसका नतीजा मतलब ये नहीं होता कि दूसरे जो हैं वो उस नस्ल से ताल्लुक है, नस्लन वो भी हैं लेकिन वो किसी और की औलाद हैं, और आप किसी और की औलाद हैं तो सब अरब ही या है तो सब जर्मनी,
किया है, तो सब फ्रेंच ही एक्सेट्रा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग में और हिस्टोरिकल प्रोसेस की डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने में। तो ये दूसरा फैक्टर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहरहाल इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है। कम अज कम पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो बहुत है इसकी सिग्निफिकेंस कि आपने जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वो सिर्फ एथनोसेंट्रिक नहीं है, रेशियल भी है, एथनोसेंट्रिक भी रखी है आपने। पता नहीं क्या इसकी मकसद था और क्यों इन्होंने ये किया और उसको डिसेंट्रलाइज भी नहीं किया, और अगर रखा तो उसके बाद उसको मुस्तकिल परवान चढ़ाते रहे। तो बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के 60 साल के अंदर जो कुछ हुआ उसमें ये फैक्टर एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने एथनिक पर्टिकुलरिटी को कैसे टेकअप किया या आपके बड़े लोगों ने कैसे टेकअप किया। ठीक है, अगर आप एक कंट्री इसमें कोई बात है कि आप एक बंगाली से गए, नहीं तुम बंगाली नहीं हो तुम मुसलमान, ये क्या बात है? बंगाली है वो, मुसलमान भी है, मतलब मुसलमान होना, बंगाली होना और पाकिस्तानी होना कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पे पेश किया गया। कॉन्ट्रडिक्ट्री है कि बीइंग बंगाली एंड बीइंग मुस्लिम एंड बीइंग पाकिस्तानी, कॉन्ट्रडिक्ट्री है ये आइडेंटिटी। या ये है कि किसी पंजाबी से ही एक्सपेक्ट करना कि तुम मुसलमान हो तुम पंजाबी नहीं, या तुम पाकिस्तानी हो तुम पंजाबी नहीं, या ये कि किसी पठान से ये तवक्को करना कि नहीं तुम पठान नहीं हो तुम पाकिस्तानी हो या तुम मुसलमान हो, यू नो। तो या तो मुस्लिम नेशनलिज्म का फ्रेमवर्क आपने लिया या पाकिस्तानी नेशनलिज्म का फ्रेमवर्क निकाला या फिर आपने पंजाबी नेशनलिज्म, तो सबसे ताकतवर कौन सी चीज रहेगी? पाकिस्तानी एब्स्ट्रैक्ट चीज थी भाई, किस तरह कॉन्ट्रास्ट करता दूसरे पाकिस्तानी से वो अपने आप? या ये कि तमाम मुसलमान है, किस तरह कॉन्ट्रास्ट करता? मुस्लिम नेशनलिज्म आपने निकाला, नहीं तुम पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हो और वो इंडियन नेशनलिस्ट है, या इंडियन मुस्लिम है और तुम वो टर्किश मुस्लिम है और तुम पाकिस्तानी मुस्लिम। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी, जो चीज उसको बिल्कुल मायने लगी, वो तो पंजाबी होना या पठान होना या सिंधी होना या बलोच होना, वो याद रहा उसको। आपने उसकी नेचुरल जो आइडेंटिटी थी, जो उसकी रेस बेस थी, उसको अकोमोडेट करने का बजाय उसको यू नो एक्सक्लूड करने की कोशिश की। भाई वो कभी भी नहीं भूलेगा कि वो पंजाबी, वो बोलता ही वैसा है, उसका बात वही बोलता है, जबान उसकी मोहब्बत के जज्बों के इजहार के तरीके वैसे हैं, वो गजा उसकी एक खास कस्म की है, एक खास कस्म की तहजीब है, उसकी रिवायात है। उसको तुमने इस्लामाइज करने के बजाय बताया कि ये तो तुम अगर पंजाबी तुमने बात की तो तुम फिर सिख हो जाओ, और अगर तुमने ये किया क्या कहते हैं सिंधी तो तुम हिंदू हो जाओगे, और अगर तुमने ये किया बलोची तो तुम कुछ और हो जाओगे, हाँ ईरानी हो जाओगे। तो मतलब तो बताने का मतलब ये कि भाई वो सिंधी रह सकता था, मुसलमान भी रह सकता था और पाकिस्तानी भी रह सकता था, लेकिन आपने उसकी वो जो एथनिक आइडेंटिटी उसको आपने मारना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ आपका? नतीजा ये हुआ कि सबसे पहले सतह के ऊपर इस्लामी जो उसकी अहमियत थी वो कमजोर हुई। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान बनने के लिए सबसे पहले जिस असेंबली ने आपको पॉपुलर सपोर्ट दिया वो जीएम सही है कि नहीं? और सबसे ज्यादा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ हुआ बाद में जीएम सैयद हुआ। तो और तो बताने का मतलब ये कि आपने एक आदमी जो आपका हलीफ था, आपका हरीज कैसे बन गया? क्या किया आपने उनके साथ? क्या किया आपके एस्टेब्लिशमेंट? या बलोच जो थे वो आपके साथ थे, तो क्या किया आपने उनके साथ कि वो आपके दुश्मन हो गए? आज पाकिस्तानियत और बलोचियत को उसने कॉन्ट्रडिक्शन कैसे समझना शुरू कर दिया? और उसकी मजहबियत कमजोर नहीं पड़ी उसके बावजूद वो इंडिया की मदद की तरफ देख रहा है? क्योंकि बलोच का क्या मजहबियत खत्म हो गई? क्या मजहबियत है उनकी? पाकिस्तानियत भी कमजोर पड़ गई उसकी और मजहबियत भी कमजोर नहीं चल गया। अरे नहीं सही, मजहबियत भी कमजोर पड़ गई उसकी और वो एक हिंदू को अब दुश्मन दोस्त के तौर पर देख रहा है। 60 साल के अंदर क्या किया आपने भाई? क्या किया उसके साथ? तो ये जो फैक्टर होता है कि अगर मैं आप मेरे से ये एक्सपेक्ट करें कि मैं भूल जाऊं कि मैं किस तहजीब से ताल्लुक रखता हूं, तो ये तो अनरीजनेबल डिमांड है। तो क्या आपकी तहजीब के अंदर क्या तरीके अख्तियार किए गए, यानी कि जब तातारी कन्वर्ट हुए तो उनसे आपने क्या कहा कि अरब्स की तरह बिहेव करो, अरब्स की तरह बिहेव करने लगे वो, तातारियों की तरह बिहेव करते थे ना, तातारी थे तुम, नहीं नहीं तुम भूल जाओ तुम तातारी हो कि नहीं हो, तातारी ही तो रहेगा, वो तातारी ही तो है। तो बताने का मतलब ये कि उसकी अपनी रेस को कहां से भूल जाएगा वो, हाँ उसको ऐसा बना लिया अपने एक साथ कि भाई तुम तातारी ही रहो लेकिन तुम मुसलमान भी रहो, तुम पठान रहो और मुसलमान भी रहो, और तुम पंजाबी रहो और तुम मुसलमान भी रहो। हाँ देखो भाई, मसला ये है कि इस्लाम बुनियादी तौर पर एक रिलीजन है, और रिलीजन जब कहीं पर आता है तो वो मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ शक्लों में रियलाइज होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मजहब सिर्फ कुछ रिचुअल्स का नाम नहीं होता, उसकी एक अहमियत भी होती है जो किसी भी तहजीब के अंदर हलूल कर सकती है, और उस तहजीब के उन चीजों को जो कि उस मजहब से मुतसादिम होती है पर्च करती है और उसके साथ जोड़ती है जो कि उस मजहब की इल्मियत के साथ हम आ गए। यानी कि अरब जब आए तो उन्होंने क्या ईरानियों को ईरानी नहीं रहने दिया, वो ईरानी रहे, उनका आर्किटेक्चर वैसा ही था, उनका लिबास वैसा ही था, उनकी गजाएं वैसे ही थी, उन्होंने अरब गजाएं खानी थोड़ी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये गजा के साथ तुम ये खाते हो ये तो हराम है, ये तो तुम नहीं खा सकते, तो उन्होंने छोड़ दिया। वो जिस कसम के सराश खराश के कपड़े पहनते थे, सराश खराश के कपड़े पहने, जिस कसम का उनका खत था वो खत वैसे ही रखा उन्होंने, अरब जो लिखने का तरीका था वो अरब खत उन्होंने अलग रखा। तो बताने का मतलब ये कि आप अपने तहजीब यानी कि टर्क्स टर्क्स ही रहेंगे, ईरानी ईरानी रहेंगे, इजिप्शियन इजिप्शियन रहेंगे, तीनों एक थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन उसका वो जो ओवरवेलमिंग जो मैकेनिज्म होगा वो ऐसा होगा कि उसमें ना टर्किश के लिए ये मुमकिन रहेगा, ना ईरानियों के लिए मुमकिन रहेगा, ना इजिप्शियन के लिए मुमकिन होगा कि कुछ ऐसा कर जाए मजहब के नाम पे जो कि कुरान और सुन्ना के खिलाफ है। तो उसके नतीजे में एक ऐसी सिविलाइजेशन बनेगी जिसकी मल्टी डायमेंशनल मैकेनिज्म होगा, लेकिन उनके अंदर जो कदर मुश्तरक होगी वो उनका इल्मियत और उनकी कमिटमेंट कुरान और सुन्ना के साथ अनक्वेश्चनेबल रहेगी। अगर वो रहती है तो ठीक है, वो तहजीब इस्लामी का हिस्सा है, और अगर वो खत्म हो जाती है, रिप्यूडिएट कर देते हैं, तो तहजीब इस्लामी से निकल गए। तो तहजीब इस्लामी जो एथनोसेंट्रिक बुनियादें होती हैं उनको खत्म थोड़ी कर सकती है, उनको उनकी तथहीर की जाती है। यानी कि पंजाबी ट्रेडिशन के अंदर और सिंधी ट्रेडिशन के अंदर और बलोच ट्रेडिशन के अंदर कुछ तो ऐसा होगा ना जो गैर इस्लामी होगा, उसको आप ठीक करेंगे ना। उसको ठीक करने का ये मतलब तो नहीं है ना कि आप उसे कहें तुम भूल जाओ तुम सब अरब बन जाओ, ऐसा तो कभी नहीं किया अरब ने, खुद नहीं किया ये अरब ने, खुद भी नहीं किया। जब वो स्पेन गए तो उन्होंने इसका सबको अरब बना दिया, ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। तो बताने का मतलब ये है कि या टर्क जब बलकान तक पहुंच गए और पूरा चेकोस्लोवाकिया तक पहुंच गए तो उन्होंने क्या सबको टर्क बना दिया था, नहीं बनाए। तो बताने का मतलब ये है कि हमने 50 साल 60 साल के अंदर अपने लोगों अपने हलीफों को अपना हरीफ और हरीफ के बाद अपना दुश्मन बनाया। और इंटरेस्टिंग बात यह कि आम आदमी दूसरे आदमी से नफरत करने लगा, यानी कि सरहद के बाद ऐसे इलाके हैं जो पठान नहीं होता उसको कहते हैं द पंजाबियान दे, कहते हैं कि नहीं कहते, जो पठान नहीं होता उसको कहते हैं द पंजाबियान दे, मुझे भी कह रहे थे द पंजाबियान दे, पंजाबी नहीं तो द पंजाबियान दे, तो मैंने अच्छा ये इसका मतलब जो भी पठान नहीं होता, अगर मैं इससे कहूँ कि मेरी भी कुछ रेस जाके मिल जाती है पठानों के साथ, कभी यकीन नहीं करेगा तो काला पठान कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता, गोरा बिहारी और काला पठान बहुत खतरनाक होता है। तो वो जो है मैंने कहा ठीक है ठीक है पंजाबी होगा मैं तो, लेकिन ये कि वो आम आदमियों तक उतर गई वो चीज, आम बलोच के अंदर ये उतर गई। तो क्या किया आपने, तो ये जो रेशियल फैक्टर जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि कभी आपकी कुव्वत बन जाता है और तारीख के विसात को पलट देता है, और कभी आप ही के विसात को पलट के रख देता है। फौरन से जाग जाती है, वो फौरन जाग जाती है, क्रैंग एसोसिएशन फौरन से जाग जाती है.
उसको हैंडल करना एक हाईली सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म है. उसके साथ आपको, आप उस इंसान की हड्डी और रूह से उसको अलग नहीं कर सकते. उसके अंदर एक ऐसी चीज दाखिल करनी होती है कि वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म हार्मोनाइज हो जाए किसी चीज से. और ये तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया, किया आपने तारीख के अंदर. क्या दिल्ली का और हैदराबाद दक्कन का मुसलमान इंतजार नहीं करता था अहमद शाह अब्दाली का? किस बुनियाद पर करता था भाई? पठान था ना वो तो, तो रेशली वो थे ही नहीं. वो तो खट्टी दाल खाते थे, पापड़ खाते थे, या शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी को कैसे ओन करते थे? गौरी है तो. और वो आने के बाद क्या करते थे? चलो भाई जब दाल ये बंद करो सब, और ये खाना शुरू कर दो, ये पहनना शुरू कर दो. ये फ्रेमवर्क है भाई, इसके अंदर जो करना है करो, लेकिन इन चीजों को वायलेट नहीं करना. तो बताने का मतलब ये कि आपने तो बेशुमार जंगें लड़ी, उनके अंडर कमान, पठानों के अंडर कमान, या यू नो मुगलों के, या पर्शियंस के, या अब आपको एक मुल्क मिल गया तो आप मार रहे हो दूसरे को, आम आदमी को मार रहे हो. आप नौकरी कर रहे हैं, मोची है कहीं, उसको तुम मार रहे हो. क्या है ये? ये है कि आपने एक्सेसिटी को एड्रेस नहीं किया. इस्लामी तनाजुर में एड्रेस करने की, मैं इस्लामी फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, एड्रेस ही नहीं किया उन्होंने. मैंने कहा बस काफी है क्या, चलो सब मुसलमान. भाई सब मुसलमान वो तो ठीक है, लेकिन वो बलोच भी तो है, उसका क्या करोगे तुम? वो पंजाबी है, उसको क्या तुमने कोई लिटरेचर का कोई थियरी, कोई कल्चरल थियरी जनरेट की? नतीजा ये हुआ कि तुमने पंजाबी लिटरेचर को हवाले कर दिया सिखों को. लिहाजा जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर तुम्हारे बड़े बड़े अकाबिर जो पंजाबी राइटर थे उनकी वो इंटरप्रिटेशन की जाने लगी जो कि बिल्कुल इस्लाम से उसका कोई लेना देना ही नहीं. जो रिलीजियस सिंबल थे तुम्हारे माशरे के, वो सिखों सिख उसके ऊपर वो पड़ रहा है और सबको बाबा बुल्ले जाएगी. सिर्फ यही पोइट्री आया, नाम है मूसा, नाम है पता नहीं क्या, नाम है मूसा और नाम है मूसा, नाम फिरौन, ये याद रहता है. और कुछ नहीं है बाबा बुल्ले शाह में. तो तुमने बाबा बुल्ले शाह का कलाम कैसे छोड़ दिया मजहबी तहरीकों ने? जरा तुम भूल जाओ ये वो फला. पठानों का जो रिलीजियस टेक्स्ट था वो बहुत ज्यादा वो था, इंटैक्ट था, इसलिए उसमें उनको इतना खतरा नहीं हुआ, इसलिए उसमें पेनिट्रेशन उतनी नहीं हुई. और उसमें ज्यादा आड़ी तिरछी बात भी करता था, पठान उसको वैसे ही नहीं छोड़ते, तो वो बच गया लिटरेचर, वो इतना अफेक्ट नहीं हुआ. लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि जो वली खान की जो पार्टी है उसमें उससे प्रोग्रेसिव थॉट से जो लोग मुतासर थे उन्होंने जो काम किया पॉलिटिकल प्लेन पे किया, एस्थेटिक्स के प्लेन पे इतना काम नहीं कर पाए वो, क्योंकि जो मजहबियत थी माशरे की, जो मजहबियत थी वो ओवरवेलमिंग रिलीजियस थी, इसलिए कोई ऐसा आर्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके सब्सटेंटिवली जो काउंटर करता या कॉन्ट्रडिक्ट करता पठान ट्रेडिशन को. क्यों? क्योंकि पठानों में फुल कन्वर्जन हुई है, पंजाबियों में फुल कन्वर्जन नहीं हुई, सिख हैं बहुत बड़ी तादाद में. लेकिन पठान जब कोई पश्तो में गुफ्तगू कर रहा होता है तो उसका मतलब होता है वो पश्तो भी है, पठान भी है और मुसलमान भी है. तो पठान होना और मुसलमान होना एक ही चीज के दो नाम है. उसमें है कुछ सिख हैं, बहुत थोड़ी तादाद में है, बालाकोट वगैरह में जब ये आए थे तो कन्वर्ट हो गए थे कुछ सिख, लेकिन बहुत कम. लेकिन ये कि पठान होना और मुसलमान होना चूंकि एक था इसलिए वो लिटरेचर है. सिंध में आप देख लें, सिंधी जबान को आपने छोड़ दिया, नतीजा पूरी सिंधी जबान पर, मजहबी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मजहबी लोगों ने सिंध को छोड़ दिया, नतीजा क्या हुआ? सिंधी जबान पे पूरा का पूरा तसल्लुत हो गया प्रोग्रेसिव मार्क्सिस्टों का. तो अब सिंध में जो भी लड़का पढ़ा लिखा सिंधी लड़का आता है गरीब घराने का, एक तो वो बेचारा पिटा हुआ होता है, मजलूम होता है वडेरे वगैरह के जुल्म वगैरह से, और दूसरा ये कि जो जिसमें वो अपने जज्बात का इजहार देखता है पोइट्री और ड्रामा लिटरेचर और के, वो सब प्रोग्रेसिव मार्क्सिस्ट है वो पूरा का पूरा. तो उसका जो माइंड मेकअप होता है मार्क्सिस्ट होता है. अब तुम जाओ तुम भूल जाओ तुम सिंधी हो, तुम भूल जाओ तुम मुसलमान, इससे थोड़ी कुछ चलेगा सिर्फ. ना तो तुम्हारा किरदार ऐसा है, ना तुम्हारी जिंदगी ऐसी है कि वो सिर्फ इस बात पर बोल दे. ऐसा किया कभी कभार कि भूल जाओ तुम कौन हो,
तुम अल्लाह को याद, वो ठीक है उस आदमी का किरदार होगा, तो वहां तो किरदार, तो तुमने अपनी कोई कल्चरल थियरी नहीं डेवलप की मुस्लिम तहरीकों ने जो कि एड्रेस करता है एथनिक बाइफरकेशन को। बिल्कुल मैदान खुला छोड़ दिया हुआ कि सिंधी होना और हिंदू होना, यानी कि सिंधी होने की बुनियाद पर हिंदू को कबूल करना ज्यादा उसके लिए मुमकिन है बनिस्बत के एक मुसलमान को कबूल करना, क्योंकि वो मुसलमान पंजाबी भी है, बलोच भी है, पठान भी है, लेकिन सिंधी तो वो जो गांव का इंडिया का सिंधी है या पाकिस्तान का सिंधी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, सिंधी तो है। तो आपने क्या किया, आपने कोई एथनिक फ्रेमवर्क ही नहीं डेवलप किया कि उसकी एथनिसिटी को। और ये जो शेख मुजीब है, जब पाकिस्तान बना ये वो फला, तो उसने सबसे बड़ा जो है मार्च किया था साइकिल का, पता नहीं कहाँ से छिटा गांव से साइकिल पे लेके आया था, मुहिब्बे वतन था लेकिन बंगाली था, ही एथनिसिटी आ जाए उसको स्नप कर दिया, डांटा उसको, यू आर नॉट बंगाली, यू आर पाकिस्तान, बंगाली भी है पाकिस्तान है, दोनों सब कुछ है। तो अगर आप बांग्लादेश में बंगाली लैंग्वेज रहती तो क्या फर्क पड़ जाता, क्या हो जाता, अभी क्या हो रहा है, इंग्लिश नहीं पाकिस्तान की लैंग्वेज, सारी ऑफिशियल डिस्कोर्स सारी इंग्लिश में होती है, सारी यूनिवर्सिटीज का मीडियम इंग्लिश है। तो ये अगर पंजाब के अंदर पंजाबी चलने देते और सिंध में सिंधी चलने देते, बलूचिस्तान बलोचि, तो क्या हो जाता, क्या कौन क्या हो जाता, चलनी तो इंग्लिश ही थी, इंग्लिश ही चल रही है ना। आपका सीएसपी ऑफिसर की अगर अंग्रेजी ठीक नहीं हो तो बन सकता है सीएसपी ऑफिसर हो, चाहे उसको पंजाबी आती हो या नहीं आती हो, या सिंधी आती हो या नहीं आती हो, उर्दू आती हो, तो तुम्हें तो असल तो डिक्टेट तो ये कर रहा था, तो इससे क्या फर्क पड़ता। तो बताने का मतलब ये कि आपने अपने हलीफों को अपना हरीफ बना लिया, क्यों, क्योंकि आपकी कोई एथनिक पॉलिसी नहीं थी। और चलो एस्टैब्लिशमेंट को भाड़ में झोंको, वो तो पता नहीं किस तरह सोचती है। मजहबी तहरीकों ने क्या किया, यानी कि पूरे बंगाल के अंदर एक बड़ी मजहबी तहरीक नहीं थी जो काउंटर करती, सिवाय जमात इस्लामी को, वो भी अर्बन सेक्टर के अंदर थी, जैसे हाँ पाकिस्तान के हर जगह पर अर्बन सेक्टर के अंदर नदिया हो, सबको मार दिया उन्होंने, 60,000 आदमी मार दिए बंगाली हिंदुओं के साथ मिलकर मार। तो ये एथनिसिटी जो है बड़ी खतरनाक चीज होती है ये। तो आप अगर आपने चलो भाई मुसलमान है सब भूल जाओ, कैसे भूलेगा भाई, अभी नहीं भूलेगा वो, आपको उसको सिस्टमेटिकली एड्रेस करना था, आपने एड्रेस नहीं किया, दूसरों ने एड्रेस करके उसको बुनियाद बना के आपके मुल्क के टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने पे डर पे हैं और आपकी आंखें नहीं खुल रही। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम इस बात को रिजेक्ट करते हैं कि रेस जो है वो डिक्टेट करती है पूरे इंसानी तारीख के अमल को, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि रेस इररिलेवेंट फैक्टर है हिस्टोरिकल प्रोसेस की। अगर हम पाकिस्तान की तारीख में, तो हम कह सकते हैं कि एथनिक पर्टिकुलरिटी ने बड़ा फंडामेंटल रोल प्ले किया है पाकिस्तान की तारीख को शेप करने। और अगर आप तुम पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जितनी जिम्मेदार है इस खेल को खेलने में, उतनी मजहबी तहरीकें भी हैं, क्योंकि मजहबी तहरीकों ने कोई कल्चरल थियरी डेवलप करने की कोशिश ही नहीं कैसे एड्रेस करेंगे। यानी कि जिस तरह पंजाबी को इस्लाम के करीब लाने के लिए आप मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, क्या उसी मैकेनिज्म पे आप पठान को भी एड्रेस करेंगे कि नहीं, एक ही वेवलेंथ पे सबसे बात करेंगे आप, एक वेवलेंथ पे सबसे बात नहीं की जा सकती, सबकी अलग अलग अप्रोच होती है, सबकी अपनी अपनी कल्चरल एथनिक पर्टिकुलरिटीज होती है। आपको उसके लिए कोई साजिश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके रिलीजियस सिंबल्स क्या हैं, उसके ब्यूटी के सिंबल्स क्या हैं, उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उसको आप क्लेंज नहीं कर सकते, उसकी तथहीर करते हैं आप, और उसकी तथहीर करने के लिए आपको कई सतहों के ऊपर काम करना पड़ता है, आपको अदब भी प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो फलसफा भी प्रोड्यूस करना पड़ता है, आपको उस किस्म के एड्रेसेस डेवलप करने पड़ते हैं जिनके साथ गुफ्तगू करना उसे नेचुरल लगे, अपनाइयत का एहसास हो उसको। अगर आपने ये नहीं किया तो उसके नजर मैदान खुला रहेगा। सबसे ज्यादा सिखों ने जुल्म किया है मुसलमानों को, तो पंजाब में मुसलमानों को इतना जुल्म किया है सिखों ने, तो उसकी नजीर नहीं मिलती पंजाब की पूरी तारीख। उसका असर इतना खतरनाक खौफनाक पड़ा पाकिस्तान की तारीख के ऊपर बल्कि सब कॉन्टिनेंट कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जब सिखों को मारा तो पंजाब ने यह समझा कि ये अंग्रेज अच्छे लोग हैं, इन सिखों से तो बचाया हमें कम से कम, तो उन्होंने हमेशा अंग्रेजों को दोस्त के तौर पर देखा, फ्रेंड के तौर पर देखा, क्यों उसने बुझे कुछ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं था, जो उनकी मर्जी आ रही थी कर रहे थे, और मुसलमानों को उन्होंने तख्ते महश बना रखा था, जो पंजाब का मुसलमान था जो हॉरिफाइंग पीरियड उसने गुजारा है, उसमें उसने अपना ईमान भी बचाया, उसने जुल्म भी सहा, उसने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, उसने अपनी औरतों की कुर्बानी दी, और बदतरीन जुल्म सिखों ने मुसलमानों के ऊपर रवा रखा, और जब अंग्रेज आया अंग्रेजों ने सिखों को मारा, तो अब आप कहें कि पंजाब का मुसलमान सिख की अंग्रेज की फौज में क्यों भर्ती हो रहा है, तो भाई क्यों नहीं भर्ती हो, वो बचाया ना उसको, फिर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया वहां पर, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, उसकी सुनवाई होती थी, कोर्ट्स डेवलप किए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया अंग्रेजों ने, तो उनके हलीफ बन गए 1857 में, पंजाब ने साथ नहीं दिया, क्यों नहीं साथ दिया, अंग्रेजों ने एड्रेस किया ना भाई उनकी एथनिसिटी को, तो वो उन्होंने सर्व किया उनको, तो बताने का मतलब ये है कि आप इस फैक्टर को इग्नोर कर अगर कोई पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो आप क्या समझने के सस्टेनेबल होगा वो,
इसकी एक वजह ये समझ सकती है इस्लाम जो मजहबी तरीके से उन्होंने कल्चर को बहुत लिमिटेड किया, डांस गाना शायरी तक रखा, वो जो जिंदगी में और बहुत सारी चीजें रहती हैं उसको यही एड्रेस ही नहीं किया कभी, मतलब सोचा नहीं कि ये भी कल्चर का पार्ट हो सकता है, तो उस चीज को माइनस करने की कोशिश करते रहे इंटेंशनली। और
देखो मसला ये होता है कि ये तो मैं नहीं समझता ऐसा कि
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा तब समझ सकते तो उन जब वहां जाता हूँ तो उनकी मस्जिद का मौजूद होता है तो उसके नजदीक जो है डांस हराम है, गाना हराम है, और जो कल्चर इवेंट जब आते हैं तो उसमें आप डांस नहीं करेंगे, पठान नहीं, गाना नहीं करेंगे, मतलब खटक नहीं होगा, ये चीजें नहीं होगी, तो वो मतलब समझता ही नहीं है कि ये पठान का ये रद्द कर रहा है अपने आप को, इसका होता है
नहीं। देखो मसला क्या है, मसला ये है कि ये हमारा और मेरा और तुम्हारा जो तारीख जबर है उसके अंदर हमने कल्चर को रिड्यूस किया है इंटरटेनमेंट के अंदर, ये उनका नहीं हमारा प्रॉब्लम। हमारे यहाँ जब भी कल्चरल एक्टिविटी का मतलब होता है उसमें मुख्तलिफ तरह के नाच, मुख्तलिफ तरह के चंपूगिरी के कपड़े और चंपूगिरी के खाने, ये खाना कपड़ा वो भी अनयूजुअल कदम का कपड़ा, अनयूजुअल कदम के सर के बाल और इस पर रिड्यूस कर देते हैं। कल्चर जो होता है वो पूरी पैकेज होता है, वो पूरी लाइफ वर्ल्ड होती है और उसमें चीजें गुंधी हुई होती है। अब आप ये देखो ये सब ये निकाल दो इसमें, ऐसा नहीं होता कि वो ब्लॉक चूज नहीं कर सकते आप उसमें, तो जब आप एक ब्लॉक को निकालते हैं ना पूरा ब्लॉक धड़ाम से नीचे गिरता है, यानी कि एक ट्रेडिशन दूसरे ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ होता है, पैकेज के अंदर होता है। पहली बात तो ये कल्चर और ट्रेडिशन में क्या फर्क है, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो ट्रेडिशन है, कल्चर की बात नहीं। ट्रेडिशन और कल्चर में बुनियादी फर्क ये मेरा नहीं है फर्क, ये एक सोशियोलॉजिस्ट है सुजैन के लेंगे, वो ये कहती है कि ट्रेडिशन के अंदर ओरिजिन इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि तुम्हें बताना पड़ता है कि ये ट्रेडिशन की सोर्स कहाँ तक जाएगी। कल्चर के अंदर एक्टिविटी होती है विदाउट एनी स्पेसिफिक रेफरेंस टू द सोर्स। तो तुमने देखा हो किसी कल्चरल एक्टिविटी को जब आप कहते हैं देखो ये जो तुम कल्चरल एक्टिविटी करते हो ये बुनियादी तौर पर ये तो हिंदू करते थे, तो ये तुम क्या कर रहे हो उस कल्चरल एक्टिविटी का ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, उसको ले आकर जोड़ते हो किसी सोर्स में। कल्चर की जो पूरी डिस्कोर्स है ना वो तो इंटेंशनली कंस्ट्रक्ट की गई है ताकि ट्रेडिशनल जो सोर्सेज है उसके साथ से काट दिया जाए, कट जाए। ये लैंगर का आर्ग्यूमेंट है पूरा इसका कि आज की डिस्कोर्स में टर्म्स को रिप्लेस किया गया टर्म से। ट्रेडिशन एक रिलीजियस फ्रेमवर्क में होता है कि जिस तरह रिलीजन के अंदर कोई भी एक्टिविटी जो होती है उसको ट्रेस करके दिखाते हैं आप सोर्स के साथ, अगर सोर्स के साथ वो जुड़ नहीं रही होती तो आप कहते हैं ये लेजिटिमेट है इसको कट करो, और अगर वो रिलीज जुड़ जाती है तो आप कहते हैं हाँ ये हमारा लेजिटिमेट ट्रेडिशन है। कल्चरल डिस्कोर्स ये है कि हाउ पीपल एक्ट, व्हाई दे आर एक्टिंग सो, बिकॉज दे आर एक्टिंग हिस्टोरिकली, व्हाई इररिलेवेंट, दैट्स हाउ थिंग्स हैपन इन दिस वर्ल्ड। तो ये कल्चरल नेम पर आप ले आए, उसकी जो सोर्स है वो लेजिटिमेट था या इललेजिटिमेट उसको आपने काट दिया। अब आप के माशरे में अगर कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है तो अब आप उसको खत्म नहीं कर सकते, यज्ञ जुम्बिश गलत, कल से कोई ये नहीं करेगा, आपको उसकी तथीर करनी पड़ेगी। उसको तथीर करने का मैकेनिज्म क्या है कि आप उसको लेजिटिमेट ट्रेडिशन के साथ जोड़ दें और जो चीजें इलेजिटिमेट है उसको पर्च कर दें, काट के निकाल दें। मसलन ये कि सूफिया के पास उर्स होता है, तो सूफिया के पास उर्स होता है तो उसमें कुछ लोग नाचते भी हैं, कुछ भंग भी पीते हैं, खाना खाते हैं, लंगर खाते हैं, कुछ सजदे मारते हैं, कुछ मिट्टी खाते हैं, कुछ मिट्टी जख्म के ऊपर लगाते हैं, बाबा की करामात के मुख्तलिफ मजाहरे उसमें होते हैं। ये अब आपने ये सब गलत है, सब बंद कर दो और हम बंद कर देगा वो, तुमने उसको, उसके पास ना स्कूल है ना कॉलेज है ना कुछ है, ना उसकी कोई मजहबी ट्रेनिंग है, वो कुछ भी नहीं है उसके पास, बाबा का आसरा है उसके पास। वो कहता है बाबा का आसरा होने का मतलब होता है अल्लाह का आसरा, किसी ने उसको बता दिया। तो अब आप उसको ट्रेडिशन के साथ लिंक करोगे ना, ट्रेडिशन के साथ लिंक करके उसे कहोगे हाँ माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है कि तुम्हें खाना मिलता है, लेकिन ये बाबा दरअसल ये खाना इसलिए करते थे कि तुम लोग अल्लाह की इबादत के लिए, तुम्हारे पास वक्त बच जाए इसलिए खाने का इंतजाम करते थे, चलो अपने खाना खा लिया अब अल्लाह की इबादत करो। ये नाच वाच कर रहे हैं, कहा नहीं है नाच ना जरूरी होता है, अच्छा ठीक है नाच लेना, लेकिन ये पहले नमाज तो पढ़ लो, नमाज के बाद नाच लेना, नमाज के बाद नाच लेना, और नाचना पहले बाबा तो पांच वक्त के नमाजी थे, बजाय कि वो बाबा सब पता नहीं किसको तुमने दबा दिया इसमें, पता नहीं बाबा बाबा पता नहीं कौन थे, वो सब बकवास, ये कुछ नहीं होता, चलो जाओ लोग मजा के मस्जिद में बैठो। उसको सिस्टमेटिकली आपको ठीक करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा बाबा ये बड़े बड़े अच्छे थे, बाबा बड़े नेक थे, बाबा बड़ी नमाज पढ़ते थे, बाबा जैसा बनने की कोशिश करो। तो बाबा जैसे बनने की कोशिश करें, बाबा जैसे बनाने की कोशिश में उसको बना दो, सहाबा की जिंदगी से जोड़ दो। बाबा क्या ये कह सकते हैं कि नबी की तरह जिंदगी ना गुजारो, या बाबा ये कह सकते हैं सहाबा की तरह जिंदगी ना गुजारो, तो उसको बर्डन डालते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा वो। अगर तुमने उसको स्टिग्मेटाइज करके कहा कि भाई ये सब बिल्कुल गलत, ये कल्चरल एक्टिविटी सब गलत होती है, तो कल्चर को इरेडिकेट नहीं किया था, उसकी तथहीर होती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मजहबी तहरीकें थीं उन्होंने ये मैदान बिल्कुल खाली छोड़ दिया, बिल्कुल खाली। हाँ
देखो मसला ये होता है कि हाँ
देखो इसके लिए क्या हो सकता है, क्या समझा नहीं, ये सही है मैं समझ गया, तीनों चीजों को हैबिट को रिड्यूस कर दिया और फिर क्या किया, कंसिस्टेंसी को आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी आदत इख्तियार करते हैं। तुम्हारे लिए वो पैड कैश दाढ़ी रखता है यहाँ पर होंठ के नीचे इतनी सी, तुझे क्या रैशनल है भाई, तुम वैसी रख लेते हो, पूरी दुनिया के मुसलमान रख लेते हैं, तो ये वो आदत है पैड कैश की, या उसके ब्लेड नहीं था उसके पास, तो बस यहीं पे बाल थे उसके शायद, तो सबने रख ली, तुम्हें नबी की तरह तुम्हें शक्ल इख्तियार करना अगर उनकी आदत भी थी तो तुम्हें ये पैड कैश ज्यादा तुम्हें अजीज है। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई आदमी ये कहे कि आदत भी थी तो क्या आदत को इख्तियार नहीं करते क्या लोग, और प्रॉफिट की आदत में बदमाश की आदत में कोई फर्क ही नहीं होगा, प्रॉफिट कोई ऐसा काम कर सकता है जो कि ठीक ना हो। तो पहली बात तो ये कि उसकी तथहीर करना जरूरी होता है। अगर फर्ज किया कि जैसे आप कहते हैं बहुत सारा اولاد کی حالت یہ ہوتی ہے شروع میں باپ کو فالو کرنے کی, جیسے میں ایگزامپل میں نماز پڑھتے ہوئے مونچھے مونچھوں سے کھیلنا, ناک میں انگلی ڈالنا, آنکھوں میں سب کر رہا ہوں, بڑی لمبی لمبی میں کہتے پڑھتا ہوں بھائی کا, تو میرا چھوٹا بیٹا بھی جو میں کر رہا ہوں وہی کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں. اب جب سے اس نے میرے ساتھ پڑھنے چل گیا تو میں اپنی عادتوں کنٹرول کرتا ہوں, تو وہ دیکھتا ہے اچھا ناک پہ وہ بھی فوراً آ رہا ہوں, تو مجھے میں دیکھ کے کہتا ہوں کہ یہ میں نے کیا اس لیے کر. تو کبھی کبھار تو مجھے کان میں یاد دلاتا ہے ناک میں انگلی ڈالنے کا ٹائم ہو گیا ہے کیا, چار میں نہیں ڈال رہا تو کیا یہ بھی پارٹ ہے اس کا, اس کا حصہ ہے یہ, آج تو اس نے ڈالا ہی نہیں. میں بیٹا دیکھو میں بدماش ہوں یہ میں کرتا ہوں, اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک وقت آئے گا جو مجھے بڑا ہو کے کہے گا یہ آپ غلط کرتے ہیں. نماز نہیں زندگی کے بہت سارے فیصلوں میں میرا, جس طرح میں اپنے باپ سے کہتا ہوں کہ میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا, یہ بالکل غلط ہے آپ کی بات, میں نہیں مانتا ہے, تو اس کے نتیجے میں کیا میرا باپ کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے یا میرا باپ کہتا او ہو مجھے غلط کہہ دیا لہٰذا آج سے میں اس کا باپ نہیں, یہ میری اولاد نہیں. ہزاروں بار بھی اگر باپ بولتے تب بھی نہیں ختم ہوتا. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی سولوشن کی آپ کو مل جاتا ہے فیملی کے ساتھ, جیسے میں غلطی کرتا ہوں تو تمہارے کیا خیال ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے جو بتا سکے کہ بیٹا تمہارا باپ جو ناک میں انگلی ڈال رہے توجہ نہیں ہوتی, نماز میں ماڈرنسٹ ٹائپ کا آدمی ہے ایسے ہی ٹوپی نہیں پہنتا, کبھی ٹوپی پہن لے رہا ہے, کوئی تماز اس طرح تھوڑی پڑتے ہیں. تو تمہارا کیا خیال ہے میرا بیٹا کہے نہیں میرا باپ صحیح کر رہا ہے, یہ مولانا صاحب غلط ہے, وہ کہے گا نہیں میرا باپ غلط کرتا ہے مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. یہی ہے میرے جو مولانا صاحب بچے کو پڑھانے آتے ہیں ان کی 15 سال ہو گئے, وہ صرف حافظ کو پڑھا, وہ کچھ نہیں, ان کو اسلام تھیوری وغیرہ کچھ نہیں, ان سے زیادہ میں نے پڑھا. لیکن میں اپنی بیوی کو کوئی مسئلہ بتاتا ہوں نا, دیکھو اس کا مسئلہ یہ ہے, اور کئی ریفرنس سے بتا جھوٹ بول رہا ہے, اس کا یہ کہنا شکل تمہاری بالکل مسلمان ہو. میں مولانا صاحب سے پوچھوں, مولانا صاحب 15 سال کے جو ہیں وہ بتا دیں, مولانا صاحب کو بعض مسئلے پتہ نہیں ہوتے تو کہتے ہیں اچھا میں پوچھ کے آ کے حضرت صاحب سے پوچھ کے پھر آپ کو بتا دوں, تو وہ حضرت صاحب بھی وہی بتاتے ہیں جو میں نے بتایا. میں کہا بھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہاری نہیں ہے نا شکل مسلمان والی, میں کیسے ٹرسٹ کروں تمہاری بات, پتہ نہیں تم کیا بول دو, بیٹھے ہوئے ہو ٹی وی میں آ رہا ہے ان کو برا بھلا بول رہے ہو, اس کی غیبت کر رہے ہو, اس کی گالیاں بک رہے ہو, اور تو یہ تمہاری بات پہ میں بھروسہ نہیں کرتی. مولانا صاحب کی بات پہ بھروسہ کرتا کیوں, کیونکہ شکل ویسے ہی, زندگی ویسی, اس کا ذریعہ معاش ویسا ہی, وہ جب گھر میں آتا ہے تو ٹی وی کی آواز کم ہو جاتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے نا 15 سال کا آدمی. تو امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ یہ معمولی اسٹرینتھ نہیں ہوتی, یہ اسٹرینتھ ہے, اسے آپ نے استعمال نہیں کیا, اتنی زبردست قوت کو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا. آپ اگر کوئی کلچرل ٹرانسفارمیشن کی تحریک شروع کریں اور اس میں آپ ڈنڈے ونڈے نہیں مارے, آپ پیٹھ پیش کر دیں اپنی ڈنڈوں کے لیے, کتنے لوگ آپ کے اوپر ڈنڈے برسا سکتے ہیں, بدماشی کرنے میں بدماشی کروں گا اور میں بدماشی کرنے میں تیار ہوں, میں اس لیے تو میں مار رہا ہوں کہ میں یہ بدماشی کرنا چاہ رہا ہوں. کتنے لوگوں میں یہ ضرورت ہے کہ وہ یہ کریں, نہیں کر سکتے. جیسے یار میں بدماش ہوں میں اس لیے کرتا ہوں مجھے معاف کرنا, نہیں جیسے ہوتا تھا نائٹ میچز ہوتے تھے تو ہم تو وہ آ جاتے تھے مولانا صاحب, ہمارے ساتھ ہی کرکٹ کھیلتا تھا بہت اچھا کھیلا, وہ تبلیغ جماعت میں چلا گیا, تبلیغ جماعت چلا گیا اس کا ہلکا اثر ہو گیا 7-8 لڑکے, تو نائٹ میچ جو تھا وہ ہوتا تھا رمضانوں میں, رمضان ٹورنامنٹ کھیلاتا تھا, تو وہ ایک دن جو ہے وہ ہوتا تھا عصر اور مغرب کے بیچ میں 8 اوور کا میچ, تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں بہت پیسے ویسے بھی ملتے تھے یہ سے وہ سے, تو وہ گالیاں بھی بکتے تھے, روزے میں بھی ہوتے تھے گالی بھی بکتے تھے میجورٹی کا روزہ, تو اس دن وہ جو ہے آ گئے اپنا شجا آ گئے پچ کے اوپر کھڑا ہو گیا, इसके ऊपर खड़े होकर उसने कहा कि ये देखो तुम लोग क्या तुम लोगों ने तूफान बच्चे में भी मचा। उसमें एक से छठा हुआ हड्डेबाज लड़का, उसने 15 मिनट तक साफ कंडेम किया था। और उसने कहा कि ये वो वक्त है जिसमें इंसान के तमाम गुना माफ होते हैं, तुम लोग यहाँ पे गालियां बकते रहते हो। एक लड़के की भी जरूरत नहीं हुई कि उससे कहता कि आप गलत कर रहे, सब चुप करके बैठे, मैच हो, सब तैयार हो गए। उसमें बड़े लोग भी होते हैं, जॉब के भी होते हैं, उसमें सबको कंडेम करके चले थोड़े चले। तो मैं वही, अब तो टाइम कम रह गया, 4-4 ओवर का मैच है, एक की भी जरूरत नहीं है उसको धक्के देके निकाल देगा। ये स्ट्रेंथ होती है। और वो मुस्तकिल करते 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 उसने क्या किया कि उसने वो मैच खत्म करा, लेकिन लोगों ने छोड़ा तो नहीं, छोड़ दें। उसने कहा देखो तुम लोग इतने 1000 रुपए मिलेंगे तो ऐसा करो उसको नाइट मैच में कन्वर्ट करो, तरावी के बाद नाइट मैच हो। कमिटमेंट तो सबकी थी क्रिकेट से, तरावी जब खत्म होती थी उसके बाद मैच होता था 8 ओवर का। और उसने अपने किसी हजरत साहब से कह दिया कि ये इतनी बदमाशी यहाँ होती है तो नाइट मैच के लिए, तो किसी हजरत साहब बाबा ने पैसे, तो मैं कहा जाए कितने पैसे होंगे नाइट मैच के इंतजाम में, दे दिए पैसे कि ये कम से कम असर और मगरिब के बीच ले गए। तकरीबन 50-60 लड़कों को मस्जिद में लाके बैठाया था तो वो बैठ जाते थे। तो बताने का मतलब है उसने कोई मारा नहीं, डंडा नहीं चलाया कुछ, उसने असर्ट किया। और असर्ट करने के लिए उसने कहा आप लोग मुझे मारना चाहते हो तो मार लो मुझे, मैं तो आप लोगों को सही बात बता रहा हूं। और आप लोग खेलना हो खेलते हो, तो एक दो दिन खेले भी वो कंडेम करता रहता है मुस्तकिल सबको। तो ना कुछ बीच में से चले जाते थे या बदले लोग चले जाते थे, तो कह रहे मैं जल्दी आउट हो गया, इसने मुझे टेंस कर दिया, बिल्कुल ख्यालात आते रहे ये आउट हो गया मैं। तो टॉर्चर करता रहता है सबको, टॉर्चर 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 टॉर्चर, कोई आउट हो जाते थे, कोई फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, कोई कुछ हो जाता। तो बताने का मतलब ये कि आपने कल्चरल प्लेन पर कुछ किया नहीं, तो उसके नतीजे में इंसान जो है वो अपनी इमोशनल एक्सप्रेशन का कोई ना कोई इजहार तो चाहेगा ना, वो क्या करेगा उसको, इमोशनल वैक्यूम में थोड़ी रहेगा वो। तो वो इमोशनल जो उसका वैक्यूम था उसको उसने कहा कि अच्छा ये रिलीजन जो है वो एक रैशनल स्ट्रक्चर है ना, और बाकी इमोशनल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, नाचना गाना अय्याशी करना पिकनिक मनाना, ये होता है। और दूसरी चीज है अल्लाह रसूल की बात का जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, आर्टिफिशियल बन जाओ, चलो मस्जिद आ गए, जैसे हमारे दोस्त हाँ भाई ये सब बातें बातें कर रहे हैं और तो एकदम से कमीजी हो रही है फुल और एकदम से। तो जब वो नमाज पढ़ता था तो हमारे एक दोस्त कहते इनकी नमाज देखे गुरु ने उला के मुसलमानों की याद ताजा हो, गुरु ने उला के जिस तरह आ गया वक्त नमाज में है तो जब वक्त जब पता नहीं क्या बिल्कुल ऐसे करता जम बोली थी अचानक और वो नमाज खत्म होती फिर उसी सफा की बदमाशी में बिल्कुल बराबर। और कोई उनसे मिला भाई ये जो तुम कह रहे हो वजू नहीं टूटा तुम्हारा, तो उसमें कोई बोल दे ऐसे उनके कथा में वजू नहीं टूटता, सब बदमाशी की बात में वजू सलामत रहता है क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। हो सकता है इस्लामी तहरीक में या इस्लामी तारीख में किसी ने इस सतह की गुफ्तगू की ना हो तो उसके लिए कोई हुक्म भी ना हो। तो बोला नहीं नहीं हुक्म नहीं है तो फिर जाएगा वजू नहीं टूटता, हालांकि सबका ये ख्याल हुआ वजू बिल्कुल नहीं हुआ वजू टूट गया है ना। तो बताने का मतलब क्या है कि आप समझते हैं कि ये जिंदगी रिलीजन का काम था, ये जिंदगी से अलग चीज है, जब मैं रिलीजियसली कुछ करता हूँ तो जिंदगी से अलग हो गया, अब मैं आ गया हूँ दोबारा जिंदगी वो है जो एकदम से उठ रहा है या फिर जिंदगी वो है जो उसके बाद हो रही है, दैट इज द इशू। तो आपने इस पूरे मैदान को बिल्कुल एड्रेस नहीं किया, और जिन्होंने एड्रेस किया उसके नज़र में गलतियां की होंगी, उसमें کیونکہ وہ تو نظریات ہیں اور وہ نظریات میں غلطی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ تو آپ کی تمام خانقاہوں سے بدماش لوگ آ کے بیٹھ گئے, ان کی شکل دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بابا سے کوئی تعلق ہوگا, بابا سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اس کا. بابا جو بھی اندر دبے ہوئے ہیں اس کے, وہ ان سے تو بالکل اس کا تعلق نہیں نظر آتا. وہ جو اس پیسے لے رہا ہے, پیسے بنا رہا ہے, اتنی موٹی موٹی گردن ہے اس کی, تو یہ کیسے ہو گئی؟ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے وہ میدان خالی چھوڑ دیا. اگر آپ وہ خالی چھوڑیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گا, کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا اس میں. تو اس اسپیس کو آپ نے چھوڑا. تو ہسٹوریکل پروسیس کے اندر ایتھنک جو اسپیسیفسٹیز ہوتی ہیں, اگر آپ نے ان کو ایڈریس نہیں کیا, ان کو ایڈریس کیے بغیر آپ نے کوئی پالیسی جنریٹ کی, کوئی اسٹریٹجی جنریٹ کی, تو آپ بڑی غلطی کرتے ہو, آپ سے بڑی غلطی ہوگی. اور آپ نے اگر وہ میدان کو انکارپوریٹ کیا, جیسے وہ تحریک احرار کے اوپر ایک آدمی کی پوری تعریف تھی, تو تحریک احرار کے جو لوگ تھے جب ان سے پریشر آتا تو وہ بھاگ کے ادھر آتے تھے, تو مدرسوں میں آ کے وہ چھپتے تھے. تو احرار کے کچھ لوگ جو ہے وہ بعض مدرسوں میں آتے تھے, تو اس میں یہ جو آدمی جس کی سوانح عمری تھی, یہ جو تھا یہ لکھنؤ کا تھا, احرار کا وہ تھا, وہ تھا لیڈر. تو تحریک احرار میں تھوڑی ملیٹنسی بھی تھی, یہ ملیٹنٹ بھی تھے. تو مدرسے میں آتا تھا تو وہ مدرسے میں ہی رہتا تھا, تو مدرسے میں جب وہ رہتا تھا تو اس میں اپنی تفریح کیا ہوگی, تو کہتا تھا رات کو جو ہے وہ شعر و شاعری ہوگی. تو اس کے اندر طلبا ہوتے تھے پورے ہندوستان کے بھی ہوتے تھے, اس میں پٹھان طلبا بھی ہوتے تھے, اس میں لکھنؤ کے بھی ہوتے تھے, حیدرآباد کے بھی ہوتے تھے, سبھی لوگوں کے ہوتے. تو بائیفرکیشن ہو جاتی تھی مدرسے کے اندر, جو پشتون بیلٹ کے ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ غلط کام ہو رہا ہے, یہ شعر و شاعری وغیرہ کیا, شاعر وغیرہ وہ قرآن کی آیت وغیرہ نکال دیتے. تو یہ جو تھا جو بندہ جس نے کہا کہ میں میڈیم تو اردو ہوتا تھا, بہت زبردست قسم کی اردو بولتے تھے, تو وہ اردو سب کو آتی. اس نے کہا کہ بھائی جو ہے نا آج آپ شعر شاعری نہیں پڑھیے گا تو اس کے نشے میں تو تصادم ہو جائے گا, اور کیونکہ بعض طلبا کے بیچ میں. تو اس نے جو ہے وہ اپنا دیکھا نہیں میں کلام پڑھوں گا تو نہیں کلام کیسا نہ پڑھوں. تو اس نے کلام جو پڑھا وہ نعت پڑی بڑی زبردست قسم, اور اس نے خیال رکھا کہ کوئی ایگزیجریشن نہ ہو, کوئی شرح کی وائلیشن بھی نہ ہو, بڑی زبردست قسم کی. تو اس کے نتیجے سب نے خاموشی سے سنا. تو پرابلم یہ ہے کہ جو ٹریڈیشن اور کلچر اور ریس کا جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ ایک لکھنؤ کے مائنڈ کو اٹریکٹ کرنا اور ایک پشتون بیلٹ کے مائنڈ کو اٹریکٹ کرنا ہے کہ ایک اسٹریٹجی نہیں ہوگی. اگر آپ نے کہا ایک ہی اسٹریٹجی تو سمجھ چاہیے میں لا کے ذریعے آپ نہیں ٹھیک کر سکتے, بینٹ آف مائنڈ کو آپ لا کے ذریعے کیسے چینج کریں گے؟ سید احمد شہید جو ہے انہوں نے لا امپوز کر دیا تھا نا, انہوں نے کہا بھائی لا شرع امپوز کر دی انہوں نے. پٹھان نے کہا بھائی ہم تو ہماری عورت تو شادی نہیں کرتی, طلاق ہو جائے تو کسی عورت سے گھر میں بیٹھی رہتی. انہوں نے کہا نہیں یہ تو شرع کے خلاف ہے. تو بھائی جو کلچرل اور ٹریڈیشنل جو اس کی نارمز ہیں اس کی آہستہ آہستہ تفکیر ہونی چاہیے تھی, صرف لا کے امپوز کر دینے سے یہ کہ یہ سب مسلمان ہیں لا امپوز آپ نے کر دیا, اور اس ایریے کو بالکل ان ایڈریس ہو دیا کہ میں صرف پنشمنٹ کے ذریعے تقریر کر لوں گا. پنشمنٹ کے ذریعے تقریر نہیں, تو جب لوگوں کسی نے شادی نہیں کی, طلاق یافتہ عورت ہے تو سید صاحب نے شادی کی, ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کی, ایک بیوہ سے شادی کی, نتیجہ کیا ہوگا؟ ماس سپورٹ ختم ہو گیا اور صرف اندر اس کے قتل کر دیا, کسی نے مدد نہیں. ہماری روایت کا وہی نہیں, اس کو بتاؤ تو نا روایت کیا ہے, اور یہ روایت نے روایت کو کس روایت پر کس روایت کو فوقیت دو, اس روایت کو فوقیت دو گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے, یا اس روایت کو فوقیت دو گے جو تمہارے بدھ کعبہ اور اجاز سے جا کے ملتی ہے؟ کس سے فوقیت دو گے کس کو؟ اور تمہارا کیا خیال ہے ایک بار میں بیٹھ کے میں بول دوں گا تو فوراً تمہاری وہ ایتھنک وہ جو اسپرٹ ہے ختم ہو جائے گی, تو مستقل مسلسل کام کرتے رہنا پڑے گا. تو ہر آدمی کو اپنی ایتھنک پرٹیکولیرٹی سے اوپر بھی اٹھنا پڑے گا اور سچویٹ بھی, ٹو وے پروسیس, جڑنا بھی پڑے گا اور تطہیر بھی کرنی پڑے گی. یہ کیا صحابہ نے, صحابہ نے یہ کیا اپنی زندگیوں میں, کیا اپنے آئندہ آنے والے وقتوں میں, کیا تابعین نے بھی کیا, تب تابعین نے بھی کیا, کیا نہیں کیا. اور آپ کے پاس ایسی مثالیں کہ عربز ہیں اور انہوں نے آگے سب سے زیادہ جو جنہوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا راجپوت, سب سے زیادہ کنورٹ راجپوت ہوئے, جو جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو ٹف ٹائم دیا سب سے زیادہ وہی کنورٹ ہوئے مسلمانوں میں. جو مسلمانوں کے کاؤنٹر میں نہیں ہے وہ کنورٹ نہیں ہوئے, جو آئے ان کے وہ کنورٹ زیادہ ہوئے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی جو کہ پہلے سے ہی مسلمان ہے, آپ کے تمام بڑے سمبلز کو مانتا ہے, اس کی تہذیب کے اندر بڑے بڑے مسلمان اکابرین لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں, اس کے باوجود وہ بھول گیا ان سب کو, اور اس کو پنجابی ہونا یاد رہ رہا ہے, اس کو بلوچ ہونا یاد رہ رہا ہے, اس کو سندھی ہونا یاد رہ رہا ہے, اور وہ بڑے بڑے لوگ اپنی اور وہ اس کی مذہبی وہ سب نیچے چلے گئے. تو آپ نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ, کس طرح ہینڈل کیا ان کو؟ اور دوسری طرف یہ کہ ایجپشن سولائزیشن آپ کے مقابلے پر ہے, پرشین سولائزیشن ہے, آپ عرب کے صحراؤں کے اندر چھپکلیاں کھاتے ہو, یہ آپ کی حیثیت ہے, اور آپ کنورٹ کر دیتے ہو پورے پورے ایجپشنز کو, پورے پرشینس کو, روم میسوپوٹیمیا پورا لے لیتے, کنورٹ کر لیتے ہو, کیا کیا ہوگا انہوں نے؟ تمہارے خیال بڑا ہائی کلچر پروڈیوس کیا ہوگا انہوں نے والے؟ انہوں نے ان کے کلچرل میکینزم کو ان سے بہتر سمجھا اور ان کو دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع بنایا جائے. اپنا تابع نہیں بنایا انہوں نے, اپنا تابع نہیں بنا رہے تھے, خدا اور اس کے رسول کا تابع بنانے کے لیے کیا اس کے بعد جو کچھ بھی یہ کرتا ہے کرتا رہے, عرب نہیں رہتا نہیں رہے عرب, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بتانے کا مطلب یہ کہ اتنی بڑی بڑی سویلائزیشن جس کے کیسے کیسے پوئٹس اور کیسے کیسے فلسفی اور کیسے کیسے آرٹسٹ ہوں گے, وہ بھول گیا ان سب کو, اور ایک تو اس کے بعد جب آپ کے ہاتھ سے قوت نکل گئی تو انہوں نے وہ ذمہ داری سنبھال کے اسلامی تہذیب کو دوام بخشا اور سینکڑوں سال جو ہے وہ کیا اور ریوارڈ بھی نہیں ہوئے, کیا کیا ہوا انہوں نے؟ اور آپ نے کیا کیا کہ وہ مسلمان ہے, آپ کا ملک کے ساتھ آپ کی جدوجہد میں شریک ہے, اور ملک بننے کے 20 سال بعد وہ الگ ہو گیا آپ اور ہندوؤں کے ساتھ مل کے آپ کے لوگوں کے گلے کاٹ رہا ہے اور کھوپڑیاں ہاتھ میں پکڑ کے تصویریں کھینچوا رہا ہے, کیا کیا آپ نے, کیا کر دیا, کیسے ہوا 70,000 آدمیوں کو قتل کر دیا؟ جو جماعت اسلامی کا امیر تھا ان کے 7 بیٹے تھے, 7 کو قتل کر دیا, پاگل ہو گیا جماعت اسلامی کا جو عوارب ریزسٹنس تھی وہاں پر اسلامی تحریکوں کی, وہ قتل کر دیا 7 بیٹوں, باپ پاگل ہو گیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ہندو اس نے کو قبول کر رہا ہے اور مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہو, کیا کیسے ہوا یہ؟ تو بتانے کا مطلب یہ کہ ایتھنک جو پرٹیکولرٹی ہوتی ہے اس کو یہ کہہ دینے سے یہ غلط ہے, تم یہ بھول جاؤ, وہ نہیں بھولے گا کبھی بھی, اس کو ہمیشہ یاد رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا ہی وہ ہے, وہ تو اس کے رگوں میں دوڑتی ہے. اگر تم اس سے کہو کہ نہیں تم پٹھان نہیں ہو یا تم پنجابی نہیں ہو یا تم بلوچ نہیں ہو یا تم سندھی نہیں ہو, یہ احمقانہ بات ہے.
مطلب جو لینگویج کا پرابلم ہے, یعنی جو مذہبی تحریکوں کے خطیب وغیرہ ہوتے ہیں وہ اردو ہی میں ایڈریس کرتے ہیں, یعنی اگر جو مقامی زبانیں ہیں اس میں وہ ایڈریس نہیں کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سپیریٹی ہے علمی کہ ہم جو ہے اردو زبان میں بات کریں, یعنی کہ پنجاب کے علاقے میں اگر کوئی جلسے میں پنجابی تقریر نہیں کرے گا وہ اردو میں تقریر کرے گا, یا پشتون علاقے میں وہ پشتوں میں تقریر نہیں کرے گا اردو میں تقریر کرنا پسند کرے گا, یہی اساتذہ کی سطح پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک
مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لینگویج کے اوپر کسی دوسری قوت کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ سے سکھ جب آتے ہیں تو آپ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. کیا میں نہیں کہتا کہ سکھوں کو ڈنڈے مارو, لیکن یہ کہ آپ
वन होते हो उनके साथ, वननेस की क्या बुनियाद है लैंग्वेज के अलावा और क्या है? तो वननेस की बुनियाद आपके पास तो बहुत ज्यादा थी ना, जियोग्राफी भी थी, मजहब भी था, लैंग्वेज भी थी, बहुत कुछ था ना, तो वो सब आपने खो दिया। आपके मुल्क में वो कह रहा है कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे, पंजाब की बॉर्डर के ऊपर 20,000 फौजी वो पुलिस वाले खड़े करे पंजाब के बॉर्डर। क्या मतलब वो भाई, तो बताने में ऐसे क्या क्या कर रहे, क्या हो रहा है? तो इशू ये है कि आप जब किसी से पंजाबी को जब आप तुसी कहते हो तो उसको अच्छा लगता, महावीर को आप तुसी कहते हो तो उसके कान में दर्द हो जाता है, कहते हैं क्या क्या कह रहे तुसी, क्या क्या मतलब तुसी, लो कल्चर। तो अगर जो अगर आप कहो कि नहीं सबको ये होना चाहिए और ये हायर कल्चर और लोअर कल्चर, यू नो कि अर्बन कल्चर और रूरल कल्चर, अर्बन कल्चर जो होगा उर्दू और इंग्लिश होगा और रूरल कल्चर जो होगा वो होगा उनकी मादरी जबान का, और उसको तुम पर्च करो और मजहबी तहरीकें भी वो मैदान खाली छोड़ दें तो भाई उसके नतीजे तो नेशनलिस्ट ही बैठेगा ना जाके पावर, नेशनलिस्ट ही बैठेगा जिसकी बुनियाद गजब होगी, नफरत होगी और दूसरों को दिखाए। तो प्रॉब्लम ये कि जो हिस्ट्री के अंदर ये एथनिक फैक्टर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट, और मैंने देखा है कि लोगों का रवैया एकदम से बदल जाता है आपके साथ जैसे ही आप उसकी जबान बोलते हो, चाहे थोड़ी सी बोलो इसका रवैया एकदम से बदल जाएगा आपके साथ। लैंग्वेज की जो स्ट्रेंथ होती है वो ऐसी होती है कि आप अपनाइयत महसूस करते हो, इतने बड़े हथियार को आपने छोड़ दिया बिल्कुल छोड़ दिया और आपने कहा कि नहीं, यानी कि बहादुर यार जंग जब पहली बार कायदे आजम गए तकरीर करने सरहद मुस्लिम लीग के लिए, तो जैसे उन्होंने कहा डियर माय फ्रेंड सबने पत्थर मारने शुरू कर दिए, तो इंग्लिश बोल रहे फरंगियों की लैंग्वेज बोल, बड़ी मुश्किल से कायदे आजम को लेके गए, कायदे आजम को तो नहीं आते थे, तो बहादुर यार जंग जो थे वो लैंग्वेज एक्सपर्ट थे मुस्लिम लीग, उन्हें दो महीनों में पश्तो सीखे, मुस्लिम लीग में बड़ा लीडर कोई नहीं था और पश्तो जानता था, तो उन्होंने दो महीने पश्तो सीखे और पश्तो में जाकर उन्होंने तकरीर की, और उन्होंने कहा देखो ये जो आदमी है ना ये वकील है, पता नहीं क्या क्या कह रहा होगा, कायदा है झूठ सच भी बोला इसको आती नहीं है लेकिन ये तो मुकदमा लड़ेगा, क्योंकि अच्छा मुकदमा लड़ेगा तो फिर ठीक है, और अंग्रेजों को तो उर्दू पश्तो आती नहीं है, इंग्लिश आती है तो इसको इंग्लिश हमें इसमें सबसे अच्छी इंग्लिश इसी को आती है इसलिए इसको हम लेके, मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कहा पाकिस्तान के हाथ में हाँ हम सब हो गए। तो बताने मतलब ये आप लैंग्वेज कोई चीज ही नहीं होती, ज्यादा ज्यादा हमारे लीडर क्या करते हैं जिधर भी जाते हैं उस तरह की पगड़ी बांध लेते हैं, उससे क्या होगा, पगड़ी बांध ना बड़ी पगड़ी किसी ने छोटी पगड़ी किसी ने सिंधी टोपी, ये उल्लू बनाने वाली बात है, उससे उसी जबान में गुफ्तगू करो ना, उस जबान में गुफ्तगू करो और उस जबान के जौहर सीखो, नहीं है तो पैदा करो ऐसे लोग, ऐसे लोग तुम्हारे पास नहीं है, एक पार्टी के अंदर मैं बता रहा हूं कि इतने लोग नहीं है जो यानी कि नेशनल प्लेन का लीडर हो और उसको चारों जबानें आती हो, एक आदमी नहीं आप दिखा सकते पूरे पाकिस्तान में, एक आदमी नहीं है, आप कहते हो कि नेशनल लीडरशिप नहीं पैदा कर रहे, ये नेशनल लीडरशिप है कोई नेशनल लीडर, सात सात जबानें आती नहीं है, ये जो खलीफा होते थे मुसलमानों के सात सात आठ आठ जबानें जानते थे, वो जिधर जाते थे उस जबान में गुफ्तगू करते थे, हैदराबाद का जो बादशाह था नौ जबानें जानता था वो, नौ जबानें उस्मान पाशा नाइन लैंग्वेजेस जानता था वो, और जिस जगह जाता था उसी जबान में गुफ्तगू करता था। नेहरू जब आया इंडिया तो नेहरू ने आके गांधी जी से बात की तो गांधी जी ने कहा तुम लीडर बनने के लिए आओ तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऑक्सफोर्डियन इंग्लिश में मेरे से गुफ्तगू कर रहे हो और तुम कहते हो कि मैं हिंदुस्तान के लीडर बनोगे और सूट पहन के आए हो तुम, तो उसने कहा फिर मैं क्या करूं बाबा बाबू बापू कहता था मैं बापू फिर मैं क्या करूं, उसने कहा जाके हिंदुस्तान के गांव में रहो, छह साल वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गांवों के अंदर रहे नेहरू गांवों के अंदर, और जब वो
تقریر کرنے کھڑا ہوتا تھا اسی ایکسنٹ میں گفتگو کرتا تھا, جس علاقے میں جاتا تھا اسی ایکسنٹ میں گفتگو کرتا تھا, تلنگی میں بھی گفتگو کرتا تھا, اردو میں بھی. اور جب حیدرآباد آیا تو حیدرآباد کے فال کے بعد ہزاروں لوگوں کو پتہ چلا حیدرآبادی میں گفتگو کرتا. آپ کہتے ہو کہ آپ نے بڑی لیڈرشپ پیدا نہیں کی. ابھی اتنی تو صلاحیت نہیں ہے تمہارے اندر کہ تمہارے علاقوں میں بولے جانے والی زبان وہ بول لے. لیڈر ہے وہ, کس بات کا لیڈر ہے بھائی؟ کیسے سنے گا وہ تمہاری بات؟ کس بنیاد پہ تم کہو گے مجھے بلوچوں سے محبت ہے جب تم اس کی زبان نہیں بول سکتے؟ تو آپ کہو نہیں یہ تو بڑی مشکل کام ہے. بڑی مشکل کام ہے تو بھائی لیڈر بننا ہی تو بڑا کام ہے نا. ہر کوئی بن جاتا ہے کیا لیڈر؟ اور کیا دنیا میں لوگ بنے نہیں کیا؟ انہوں نے سیکھی نہیں کیا لینگویج؟ تم سیکھ لو لینگویج, انگلش بھی تو آتی ہے. تمہارا باپ انگریز تھا کیا؟ وہ کیسے آ گئی تمہیں؟ بلوچی تمہیں نہیں آ رہی, پشتو نہیں آ رہی تمہیں؟ نہیں آ رہی تو تم جا کے بیٹھو, تو پھر تم کیسے بن کہتے ہو کہ میں بڑا لیڈر ہوں؟ تو اگر سیکولر پارٹیوں میں نہیں ہے تو کیا مذہبی پارٹیوں میں ایک آدمی ہے ایسا؟ اس کو تو عربک نہیں آتی, عربک ہی نہیں آتی اس کو, تو وہ لیڈر ہے مذہبی تحریک کا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایتھنک اسٹرینتھ ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ آدمی مر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. اور جتنے بڑے لیڈر ہیں چاہے وہ واریئر ہوں وہ بڑے زبردست خطیب ہوتے اور کئی کئی زبانیں جانتے تھے, اور کئی زبانیں جاننے کے بنیاد پر سب آدمی اس کو اپنا سمجھتے تھے, یہ اپنا آدمی سمجھتے تھے. آپ 10-12 لوگوں کی ایک ایسی وہ تیار نہیں کر سکے 60 سال کے اندر, اور آپ کہتے ہو ہمیں نیشنل پلان کی لیڈرشپ چاہیے. لیڈرشپ چاہیے, لیڈرشپ کہاں سے ملے گی؟ ہمارا کام پیڈ سیاست دان عیاشی کرنا, بدماشی کرنا. تم جو سیاست کرو نا, سیاست کی الف بے نہیں پتا, نہ تم نے اس میں کوئی ڈگری لی ہے, نہ کوئی الو بنانے کو تم سیاست کہتے ہو, اور تم کہتے ہو سیاست میں یہی ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایتھنک جو اسٹرینتھ ہوتی ہے بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے, اگر آپ اس کو ماسٹر کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, لوگوں میں آپ کی طرف اپنائیت پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ جتنی بھی آپ کو آتی ہے نا, اگر وہ آپ بول رہے ہیں ہمیں اس میں جا رہے تھے تو ایک انٹرنیشنل فلائٹ تھی, تو اس میں ایک ویٹر تھا, میل ویٹر تھا, تو میرے برابر میں 4 سیٹیں تھیں, دبئی سے لنڈن جا رہی تھی سر, 4 سیٹیں میں میرے 2 سیٹیں خالی تھیں, وہ ایسی تھی, اس میں ایک اما جی تھی. اما جی تو تھیں وہ کھلے 3 سیٹوں پہ لیٹ گئی اور میرے اوپر پیر رکھ دی, اور پہلے وہ مستقل شیمپین مانگی ہوئی, شیمپین دے دو, شیمپین دے دو, شیمپین دے دو. اس نے کہا وہ فرسٹ کلاس میں ہوتی ہے یہ وہ, خیر وہ گڑیا کو انہوں نے دے دی, گڑیا کی گیٹو نام سو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ میل جو تھا وہ انٹرنیشنل فلائٹ تھی, تو وہ اس زمانے میں جرمن سیکھ رہا تھا, تو میں نے ایک ڈکشنری کھولی جو کہ جرمن لینگویج کی ڈکشنری تھی, اس سے میں دیکھ رہا تھا. تو وہ میل ویٹر جو تھا اس نے جاتے جاتے دیکھا ہوگا, اس نے ڈاٹ شیئر دکھا ہوا, اس نے کہا اچھا جرمن پڑھ رہا ہے, تو اس کے ایسوسیشن بلڈ ہوگی نا میرے ساتھ. تو اس نے میرے سے کہا کہ یہ, میں نے کہا بوڑھی عورت ہے میں کیا کروں, میں تمہارے کو پیر رکھ کے بیٹھی انگلش میں اس نے بات کی. دوسری بار جب آیا تو اس نے کہا کہ گڑیا کو اس نے شیمپین دی تھی نا, اس کو بیچ بول رہی, اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں نہیں ہے شیمپین. اس کے بعد اس نے کہا کہ جرمن میں, اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم آتی ہے کیا جرمن میں؟ میں نے کہا میں نے کیا ہے. اچھا کیوں کر رہا ہوں؟ تو میں نے کہا جرمن ایک فلسفی ہے اس کو, یہ سب کچھ ہو گیا. ادھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ تمہیں یہاں پرابلم ہوگی, وہ آگے چیز میں دلا لے گیا, اوپر لے گیا, اوپر لے آ کے فرسٹ کلاس میں بیٹھا. بولے گا یہاں تم آرام سے 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے, وہ سو رہی ہے عورت سو رہا.
बिना वजह तुम पढ़ रहे हो डिस्टर्ब हो,
ये स्ट्रेंथ। उसने कहा कि ये हमारी जबान सीख है उन लोगों में, और इसमें क्या फर्क है, ये मेरी जबान बोल रहा। मैंने उसको जितनी भी जर्मन है वो बोली, तो मैं कुछ बोल के दिखाऊं, मुझे मैं बोला उसके साथ, बोला हाँ तो मैं पाकिस्तानियों का एक्सेंट जो होता है हर आवाज निकाल लिया। उसने कहा कि मैंने देखा है तो पाकिस्तानी में इनकी आवाजें बड़ी, उसको शौक था लैंग्वेज सीखने का, तो उसने बताया कि मैंने टर्किश सीखी और ये सीखी वो, तो एक वननेस पैदा होगी ना, वननेस जो होती है एथनोसेंट्रिक वननेस जो होती है बड़ी स्ट्रांग चीज होती है। तो आप जब किसी इंसान से गुफ्तगू करते हैं और उसे कहते हैं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये जुमला अगर तुम उसकी जबान में बोलो ना तो उसके दिल में उतरती है वो बात। आप कहते हो ये बड़ी गंदी बात है कि तुम बोलते हो मैं पंजाबी हूँ, तुम मुसलमान हो, मुसलमान पंजाबी मुसलमान नहीं होता क्या? पंजाबी अपनी इस्लाम का इजहार अगर पंजाबीयत में करे तो क्या खराब हो जाएगा क्या, वो कंटेमिनेट हो जाएगा? तो उसको इस बात पे राजी करना है कि तुम अरबी में नमाज पढ़ो और उसके मायने पंजाबी में समझ लो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसके नतीजे में पूरा नया डोमेन खुल जाएगा ना, जिसमें वो अपनी मोहब्बत का इजहार, अपने जज्बों का इजहार करे, उसके नतीजे में नेचुरलाइज हो जाएगा मजहब, नेचुरलाइज होगा और जड़ पकड़ लेगा। और जब एक बार वो जड़ पकड़ लेता है ना जहाँ पर, यानी कि ईरानी ट्रेडिशन के अंदर क्या लैंग्वेज उन्होंने भूल गए क्या अपनी लैंग्वेज? लेकिन ईरान के अंदर इतने बड़े बड़े मुसलमान पैदा हुए और ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स उन्होंने पैदा किए, वो सब उन्होंने पर्शियन में लिखा है, पर्शियन भी उनको आती थी, अरबिक भी आती थी, तो क्या मुसलमान नहीं थे क्या वो? तो बताने का, या टर्किश होने, टर्किश मुसलमान होने के बाद क्या टर्की भूल गए क्या वो, टर्किश भूल गए क्या वो?
लेकिन ये तो है मतलब, लेकिन ये कहती कि पाकिस्तान वगैरह के हवाले से ये तो इशू है मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है, जो क्यादत जो थी, क्योंकि जो उर्दू हिंदी कंट्रोल की एक बड़ा उसका रोल है, तो उसको बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस मतलब देते हैं। हालांकि खुद हदीस में आदत हुए हैं फरमाया कि अगर किसी कौम के शिखर से बचना चाहते हो तो उसकी जबान जो है सीख हो जाए, तो वो तहरीक पाकिस्तान के आदि के मतलब ये एक अमूमी रवैया है मजहबी अनासर का कि वो उर्दू को बहुत ज्यादा जो है इम्फोसिस करते हैं। आबा कौम ने नहीं किया वहाँ पर, खुद उनसे पूछा मैंने मौलाना मौजूदी से, मैंने भाई आप यहाँ इतना अरसर है पंजाब में तो आपको आती है पंजाबी जबान? कहना मुझे पंजाबी जबान नहीं है, सिर्फ एक शब्द मुझे आता है वो क्या सब भी एक होती है मतलब ये संजम वगैरह एक लफ्ज आता है। पठानकोट में रहे वो, उसके बाद लाहौर में रहे, लेकिन यहाँ तुशैल मोहम्मद पंजाबी आती है उनको, वो तो उर्दू भी पंजाबी ही बोलते हैं लेकिन वो पंजाबी में तसफी नहीं करते, तभी अपने खुद बात वगैरह जो है एड्रेस नहीं करते, अरे नहीं उर्दू जो है मतलब।
पाकिस्तान के अंदर तो ये प्रॉब्लम है कि ये सब जगह मकानी जबान में एड्रेस करते हैं, हमारा पूरा सरज में पश्तो में ही प्रॉब्लम है, कोई ऐसे इलाके जहाँ पे हिंदू बोलने वाली आबादी और पश्तो बोलने वाली बिल्कुल बराबर बराबर है, इन सब तो पश्तो में दिए जाकर हिंदू में बात की जाती है, वहाँ पर कोई मसला नहीं है। पूरे पंजाब में मसला ये है कि वो खुद कहता है कमजोरी का शिकार हो उसके मुकाबले,
नहीं मसला क्या
पंजाबी बात में रिप्लाई आपको उर्दू में देगा?
नहीं, अगर वो पठानों में कन्वर्जन फुल है ना, पठान होना मुसलमान होने में प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं मैं पंजाबी में बात करूंगा तो सिखों से वननेस हो जाएगी मेरी, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करूँ? वो भाई तो हिंदू भी तो उर्दू बोल रहा है, शाहरुख खान भी तो उर्दू बोल रहा है, उसमें क्या हो गया? तो तुम उर्दू बोलो, उसमें क्या मसला है उर्दू बोलने में? लेकिन तुम जो गांव में बैठा हुआ है चकवाल का जो पंजाबी है, तुम पंजाबी में गुफ्तगू करो ना, नेचुरलाइज करो ना उसको, रिलीजन को, रिलीजन नेचुरलाइज होता है, ताकतवर होता है, वो कमजोर थोड़ी होता है भाई, मैसेज जो है वो अपनी स्ट्रेंथ खोता है। अगर आप अभी आपके पास वो स्पिरिचुअल जार्गन से महरूम हो जाएंगे आप अगले 5-6 सालों के अंदर, कि अगर आप चाहेंगे भी तो एड्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वल्गर हो रही है लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज वल्गर होगी, सिंधी लैंग्वेज वल्गराइज हो जाएगी,
शायद खत्म हो जाए, तो तुम्हारे क्या ख्याल है एथनिक उसकी जो कमिटमेंट है वो कब खत्म हो जाएगी? भाई आप उसको मजहबियाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। आप एक बड़ा लीडर आप पैदा नहीं कर सके ऐसा जो कम अज कम चार जबाने जानता होगा, और जो बेचारे को आती है उसको लुक डाउन करते हो, और ऐसे बदमाशों को ऊपर लाते हो जो अंग्रेजी में बात करते हैं, जो तुम्हारे मुल्क की 70% आबादी, 70 ये अभी सर्वे हुआ था, उन्होंने बताया पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के जो टीचर हैं, यूनिवर्सिटीज के टीचर उनमें 27% ऐसे टीचर हैं जो अंग्रेजी लिख नहीं सकते, अंग्रेजी बोल नहीं सकते। पूरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनमें 100 में से 27 आदमी अंग्रेजी बोल और लिख नहीं सकते टीचर। अब आप उसको एग्जैजरेट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं एग्जैजरेट करते हैं, चलो 17% कर लो, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टीचर की हालत है। तो तुम ऐसे बोल रहे अंग्रेजी में हिंदी में बात कर रहे हो, क्यों भाई क्यों बात कर रहे हो? इसलिए कि तुम अंग्रेजों से डर के गुलाम थे और तुमने कहा कि उनको मुझे गुलामों की तरह ट्रीट करना। प्रॉब्लम ये है कि जो लैंग्वेज की स्ट्रेंथ होती है उसको आप हमेशा एक नेगेटिव कुवत के तौर पे क्यों इस्तेमाल किए? एथनिसिटी तो नेचुरल है, उसे तुम अपने ताकत के लिए इस्तेमाल करो ना। अगर अली का कौन है कि शैतान कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, ही कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग बट ही कैन करप्ट। शैतान कुछ पैदा नहीं कर सकता लेकिन वो करप्ट कर सकता है। तो शैतान एथनिसिटी तो एक नेचुरल जज्बा है, उसको करप्ट कर देता है, करप्ट करके मजहब के खिलाफ इस्तेमाल करता है, और मजहब को कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज बना देता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज बना देता है। तो भाई मजहब तो नेचुरलाइज होता है आपके कल्चरल हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क और लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर। जब मजहबियत आ जाती है तो आपका लिंग्विस्टिक जार्गन रिलीजियस हो जाता है, और अगर वो निकल जाए तो वो एथ्नोसेंट्रिक हो जाए, नेशनलिस्टिक हो जाए, और नेशनलिस्टिक हो गया। अभी भी कोई टाइम नहीं गुजरा, अभी भी आप कर सकते हैं कोशिश, ये करना चाहिए लोगों ने नहीं ये कोशिश की। यानी कि इसमें क्या मसला है कि मैं नहीं समझता कि जो आदमी पूरा पूरा कुरान हिफ्ज कर लेता वो लैंग्वेज चार लैंग्वेज, मैं समझता हूँ मेजोरिटी को आती होगी, दो तीन जबानें तो आती हैं, यानी कि पश्तो अगर कोई आलिम दीन है तो पश्तो उसको आती है, और इर्द गिर्द की दो तीन हिंको वगैरह भी आती होगी उसको। और ठीक है, तो तीन जमाने तो बाकी तीन ही तो बचती हैं उसके पास, वो कर ले वो, तो उसका स्कोप कितना बढ़ जाएगा, उसके एड्रेसेस कितने बढ़ जाएंगे, और उसके जो ख्यालात हैं। जब एक पठान आदमी सिंधी में गुफ्तगू करेगा आकर किसी सिंधी से, तो उससे मोहब्बत की बुनियादें मजबूत होंगी। यही बलोच से, बलोची और पश्तो आती है पठानों को, यानी पठान जो है वो बड़ी स्ट्रांग बेल्ट है, इसलिए कि हर जगह पर ही बैठे हुए हैं, दो शहरों को जो दो सूबों को जहां जोड़ा जाता है वहां पर ही होते हैं, सरहद और बलूचिस्तान की पट्टी पर है, सिंध और बलूचिस्तान की पट्टी पर है, पंजाब और सिंध की पट्टी के ऊपर है, पंजाब और सरहद की पट्टी जगह पर है, तो दो जमाने तो वो आती है उनको हर जगह पर। तो आप ऐसे लोग नहीं पैदा कर सके, मजहबी लोगों से हम कह रहे हैं कि वो पैदा करें ऐसे लोग, और ताकि वो उस पर इजहार करें, उसके नतीजे में मजहब उस एथनिक स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया जाए, ताकि उसके नतीजे में खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत के जज्बों का इजहार नेचुरल हो जाए उस माशरे के अंदर।
जहाँ पश्तो स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग है, तो उनको एक ही लैंग्वेज में एड्रेस किया जाता है और एक ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया जाता है सो दैट जो कलेक्टिवनेस.
देखो मसला ये है कि बहुत बड़े मजमुओं में के इजहार में आप उर्दू इस्तेमाल करो तो मसला नहीं, लेकिन आप जब जाओ तो लोग आपको अपना पहचाने, अपना समझें, अपना समझें, उसके लिए अपना समझने के लिए एक आपके पास बुनियाद है मजहब और एक आपके पास बुनियाद है जबान, एक पाकिस्तानियत है, पाकिस्तानी भी हो तुम मुसलमान भी हो और तुम उनसे उनकी जबान में गुफ्तगू कर रहे हो, कहो मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी जबान नहीं समझते तो मैं तुम्हारी जबान समझता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें वक्त करता हूँ और तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूँ. और तुम वो बेचारे जो सिंध के किसी गांव में एक आदमी बैठा था उसके बेचारे के पास है वो लीडर है क्या, वो बेचारा बैठा हुआ वहां पर उससे उसकी जबान में उसका मसले सुनो. बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं अपना मसला बयान नहीं कर सकते क्योंकि जबान नहीं आती उनको, चुप करके बैठे रहते हैं. यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट की हालत यह है, इंग्लिश नहीं आती इसे क्वेश्चन नहीं करते हो, क्वेश्चन नहीं करते तो मैं बोलूंगा इंग्लिश बोलूंगा मजाक उड़ाएंगे ये लोग मेरे, छोड़ो मैं चुप करके बैठा. यूनिवर्सिटी के अंदर के स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि आई कैन नॉट स्पीक, आई शुड कीप माई फिंगर क्रॉस, हाँ तो वो चुप करके बैठा. तो वो बेचारा जो एक सिंध के गांव में बैठा हुआ है जिसने जिंदगी में कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, उसको उसके माँ बाप ने बताया बेटा तुम मुसलमान हो, उसको नमाज पढ़नी नहीं आती कुछ नहीं आता लेकिन वो मुसलमान, उससे जाके जब तुम उसकी जबान में गुफ्तगू करोगे और उसकी बात सुनोगे तो उसकी उसको बात समझाओगे तो उसे समझाना आसान होगा. हमारे दोस्त बता रहे तुम नहीं तो एक दिन जो है अरब्स जो थे तीन अरब जो है कंदूर वगैरह पहने हुए थे उन्होंने, तो वो आए और उन्होंने अरबी में उनसे कुछ बात करना शुरू की हाथ मिला. तो इन ये जो तीन दोस्त थे इन्होंने हाथ बांधा और वो अरबी में क्या कह रहा है कुछ नहीं बोल, अरबी में वो अल्लाह रसूल की बात है मुस्तकिल वो बोलते रहा, वो कह रहा है ये हाथ नहीं बांधो इशारों अरबी में कुछ पूछ. अब वो अपना बार बार वो कह रहे नहीं ये समझता है कि हमारा इतना हमें उससे बड़ी मोहब्बत बड़ा इतना हाथ बार बार से. फिर एक और आया लड़का, उसने कहा भाई ये पता पूछ रहे हैं, पता भूल गए हैं ये पूछ रहे हैं बस स्टैंड कहाँ है ये पूछ रहे हैं. अच्छा हम समझे अल्लाह रसूल की बात करते. तो ये दो चीजें बता रहा है, एक मोहब्बत है अरबिक लैंग्वेज से मोहब्बत एहतराम कि भाई वो जो भी कह रहे हैं समझ में आए नहीं है एहतरामन खड़ो कुछ अल्लाह रसूल की बात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये वो कुछ हो रही होगी कुछ अच्छी बात कह रहा होगा वो क्या हमारी समझ में. दूसरी के अगर तुम्हें लैंग्वेज समझ में नहीं है तो तुम्हारे एहतराम का क्या फायदा, उसका तुम क्या करो, उससे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. बेचारा वो कह रहा मुझे रस्ता बता दो, वो बार बार हाथ दो कह रहा हाथ नहीं बांधो भाई मुझे रस्ता बताओ मैं कोई तबलीग थोड़ी कर रहा हूँ. तो तबलीग की हैसियत क्या है समझ में कुछ नहीं है, ये अच्छी बात कोई बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ पता ये नहीं मालूम, अच्छी ही कोई बात होगी इंशाल्लाह ताला अच्छी बात होगी. लिहाजा अच्छी बात का क्या मतलब है, सर झुका सुनो और जो तुम्हें करना है वो तुम करते रहो. अच्छी बात का मतलब ये होता है सुनो और अपने घर चले जाओ सो जाओ और जो अब कर रहे हो वही करते हो. कभी ये सोच नहीं कुछ क्या कह रहा था बेचारा, क्या अच्छाई क्या होती है. अच्छी बात ऐसी होती है जो इंसान सुनो और घर जाके सो जाओ. तो हमने ये जो दायरा है जो गो के ये गिबिनों का आर्ग्यूमेंट है जो अभी मैं बता रहा था, लेकिन बुनियादी तौर पर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो कंस्पिरेसी थियरीज जनरेट करने के लिए लैंग्वेज को सबसे पहले बुनियाद बना, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो वो लैंग्वेजेस भी जानते हैं जो अब मतरूक हो गई आपके इलाकों, आपके इलाकों की ऐसी लैंग्वेजेस स्वैप के अंदर पढ़ने और समझने और लिखने वाले हैं जो अब मतरूक हो गए खत्म हो गए.
बताने का मतलब ये कि हम जो भी डिस्कशन यहाँ पे करते हैं उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम ये समझते हैं कि करने के बहुत सारे काम हैं। आमतौर पे लोग उन चीजों को समझ के कहते हैं यार ये तो सब कुछ गड़बड़ी मुझे लग रहा है कि हो रहा है, तो फिर जो वो कर रहे थे वो भी छोड़ देते भाई। ये छोड़ने का वक्त नहीं, पकड़ने का वक्त है। जो चीज भी आप करो उसमें अपनी कुव्वत बढ़ाओ और फिर उसी एक स्किल को आप इस्तेमाल करो अपने पूरे कुव्वत के साथ। जैसे वो फिल्म के अंदर कंग फू पता नहीं क्या चाइना कंग फू इस तरह की एक फिल्म है, उसके अंदर वो कन्फ्यूशियस का एक कॉल है कि मुझे तुम्हारी 10,000 मूव से कोई खतरा नहीं जो तुमने जिंदगी में एक बार की, तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारी उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार की है और तुमसे बेहतर वो दुनिया में कोई नहीं करता। तो हर इंसान के पास होती है वो स्किल, कोई एक ऐसी कुव्वत जो 10,000 बार उसने की हो और उसको आता हो वो ऐसा जो दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उस कुव्वत को आप इस्तेमाल करो अल्लाह और उसके रसूल के लिए। कोई एक स्किल जो आपको बेहतरीन आती है वो आप इस्तेमाल करो। आप ये नहीं सोचो सारे काम मैं करूंगा, सारे काम हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं सारे काम नहीं करता तो कोई एक भी काम नहीं करूं, ये तो इससे दलील नहीं निकलती। और हमारे उस्ताद कहते हैं बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते हैं बड़े बड़े सहाबा की जिंदगियों के वाकयात आप देखें तो एक वाकया या दो वाकया मिलते हैं, फिर और भी तो उन्होंने बहुत कुछ किया होगा लेकिन उनको जो बेहतरीन आता था वो कर दिया उन्होंने। इसी तरह वो ऑल इन कंपैसिंग काम शायद नहीं किया हो लेकिन कोई एक काम ऐसा किया हो। एक सहाबी ने मार इतनी खाई कि कोई खा नहीं सकता उतनी मार, हजरत हबाब रजी अल्लाह तआला ने इतनी मार गए गढ़े पड़ गए थे जिस्म के अंदर, इतना जलाया गया था कि गढ़े पड़े हुए थे। हजरत उमर कहते थे जब हाथ रखते थे तो हाथ अंदर चला जाता था, इतना चर्बी जल जल के बुझाती थी कोयले को। हर सहाबी ने तो ये नहीं झेला ना, तो है वजह शोहरत ना उनकी हजरत हबाब और गुलाम थे, तो जब हजरत उमर के जमाने में इतना उनको माल गनीमत देते थे तो वो क्या दरवाजा खोल के नमाज पढ़ते थे और अपने कमरे के जो भी उनका हुजरा था उसमें दरवाजा खोल के पीठ के पीछे रखते थे कि जिसको शर्म आ रही हो उठा के ले जाए। तो अब आप कहें कि ये कौन सी बड़ी बात है भाई, कितने लोग कर सकते हैं इतना जुल्म सहे और बच भी जाए, मर जाए खुदकुशी कर लें, लेकिन वो बर्दाश्त करते रहे और इस्तेकामत दिखाई। कितने लोग दिखा सकते हैं इतनी इस्तेकामत, बड़े बड़े सहाबा ने वो तकलीफ नहीं उठाई जो हजरत हबाब रजी अल्लाह ताला ने उठाई। तो ये है ना एक सलाहियत है कि किसी के अंदर ये सलाहियत कि इतना जुल्म बर्दाश्त कर ले। जुल्म बर्दाश्त करना कोई सलाहियत नहीं होती है, हर आदमी के अंदर नहीं होती भाई ये दम। लोग अपने मजहब से पलट जाते हैं, मजहब ने तक कह दिया कि भाई अगर जान झूठ बोल दो, लेकिन वो ना झूठ बोल रहा है ना मार पे मार खाया जा रहा है, मार पे मार खाया जा रहा है, अपने खून और चर्बी से अंगारे बुझा रहे मजाक ही। तो बड़े बड़े सहाबा खड़े हो जाते थे। एक ही स्किल है ना, ना तो कोई बड़ी जंगी कोई फतूहात कर दी ना कोई बहुत बड़े कन्वर्जन कर दिए, लेकिन इस्तेहामत का सिंबल है ना। तो हर आदमी की कोई एक स्किल इतनी जबरदस्त होती है कि अगर वो इस्तेमाल करने पे आ जाए उसको तो दूसरों बड़ी बड़ी सफ़ें उलट देता है। तो हर वक्त हर स्किल की जरूरत नहीं होती, कभी आपको सफ़ें उलटने वाले चाहिए होते हैं, कभी आपको इस्तेकामत दिखाने वाले चाहिए होते हैं, कभी आपको ओरेटर चाहिए होते हैं, कभी आपको मोहब्बत करने वाले चाहिए होते हैं, कभी आपको कोई चाहिए होता है कभी कोई। तो अल्लाह को जब जिस चीज की जरूरत होगी वो आपसे ले लेगा। आप उस स्किल को इस्तेमाल करें कुरान और उसके रसूल के लिए, जो आपकी जबरदस्त सलाहियत है, जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हमने से हर बंदे के अंदर कोई ऐसी सलाहियत होती है बेहतरीन, दूसरे को शिकस्त देता है उसको। बालकों के रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा नाइट मैचेस के अंदर कम रोशनी के अंदर भी वो गेम इतनी साफ नजर आती है, ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं उनके, कि दूसरा नहीं कर, उसके बस का नहीं है, उसके हैं रिफ्लेक्सेस ऐसे। अब आप उसका क्या करेंगे, किसी के शोल्डर बहुत चौड़े, उसका क्या आप नहीं कर सकते ना, नहीं है आपके शोल्डर उतने चौड़े, तो आपके पास जो है उसको पहचानो, अपने अंदर डाल छाँक कर और उसे इस्तेमाल करो पूरी कुव्वत के साथ, और जितनी कुव्वत के साथ वो इजहार करती है उतनी कुव्वत से पलट कर वो आपकी तरफ आती है। तो ये जो है और सब कुछ करने की जिम्मेदारी नहीं, वो सिर्फ अल्लाह मियाँ के पास है, सब कुछ फिर अल्लाह मियाँ खुद ही करता है। हम लोग ये चाहते हैं सब कुछ हम खत्म करके अपना दुकान वकान बंद करके ताले लगा के सब लोग, और फिर आगे में और वो सब हंसी खुशी रहने लगे, और दुनिया में कभी भी कोई हंसी खुशी नहीं रहता, रहता है कोई? जब कहते हैं ना हंसी खुशी रहने लगे, वहीं से शुरू होते फड्डा, शादी के बाद ही अगर फड्डे शुरू होते और वो सब हंसी खुशी रहने लगे, शादी हो गई बादशाह की वो शहजादी की शहजादी शादी हो और वो सब हंसी खुशी रहने लगे, उसके बाद असल जूतम पट्टी तो फिर शुरू होती है ना हंसी खुशी रहने के बाद। तो ये वो कंफ्यूशन कहता है खुशी दो दुखों का दरमियानी वक्फा है, तो ज्यादातर तो दुख ही होते।
अच्छा ये जो है मतलब सिर के अंदर वो जो है मतलब असला था नहीं इसका लैंग्वेज का जो मतलब, लेकिन वहां पर भी ये मतलब जो इस्लामी तरीके हैं तो वो भी कोई कल्चरली कुछ वो तो नहीं कर सकेंगे, मतलब अफवान मुस्लिमीन वगैरह जो मतलब, और उनकी वो जो है वहाँ पर गहराई और फूल जो है उनका नहीं हो सका जो है वहाँ पे। इसी तरह
अगर कम अज कम हमास जो है और हिजबुल्ला जो है इन दोनों में और पाकिस्तान की इस्लामी तहरीकों में बुनियादी फर्क यह है कि वहाँ के लोग अपनी तहरीकों के लिए के साथ उनका जो रिलेशनशिप है रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है। जितना प्रेशर आया है हमास और हिजबुल्ला के ऊपर उतना प्रेशर मैं नहीं समझता इस्लामी तहरीकों के ऊपर आया पाकिस्तान में। मेरा ये हो सकता है मेरा प्रेजिडिस हो, लेकिन बड़ी मार खाई है उन्होंने दोनों ने, और वो बड़े स्ट्रांग है। उसकी वजह ये है कि वो जबान बोलते हैं जो जबान उनके लोगों की है। मैं ये तो नहीं कहता कि सिर्फ यही एक हो जाए, उनमें जो है, और दूसरी बात यह कि वो इतना ब्रेक नहीं है उसके अंदर, इतनी स्प्लिट्स नहीं है, और अगर उसमें स्प्लिट्स हैं तो आइडियोलॉजिकल बेस है, यहाँ तो स्प्लिट्स लैंग्वेज बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्प्लिट्स है भाई। रिलीजियस मूवमेंट के अंदर स्प्लिट है लैंग्वेज बेसिस पे, तो वो जो है आप उस कुवत को इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि हिजबुल्ला ने जितनी मार पड़ी है हिजबुल्ला को इसराइलियों, उनको पाकिस्तानी रिलीजियस पार्टी वो नहीं करते। हाँ
जिसमें जब सलमान वहाँ पे आए तो सब लोग कन्वर्ट तो शायद हो गए हों, लेकिन मकामी जबान की और थी वहाँ पर, इसी तरह शाम में भी और मतलब शुमालियत भी के बहुत बड़े इलाके, लेकिन उन्होंने कोई कल्चर वहाँ पर सीखने की कोशिश नहीं की ना उनकी जबान, बल्कि अरबी ही होगी उनकी जबान। ये तो आपके आर्गुमेंट का बिल्कुल
नहीं, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई नॉन अरबिक लैंग्वेज थी, ये अरब पेनिनसुला के अंदर ही आते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर अरब्स ने उनके ट्रेडिशन को सीखा। और मतलब ये कि हजरत अमीर माविया क्या ही है ना, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे मिस्रियों के, तो उन्होंने मेरे ख्याल में हजरत उमर ने किसी साहबी को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा कि तुमने ये पहना हुआ, वो खींच के बाहर लेके गए, तो उन्होंने उसके सिरत के नीचे दिखाया कि ये देखो मैं टाट पहना था, अंदर टाट पहना हुआ ऊपर से पहना इनको डील करने के लिए। तो बताने का मतलब ये कि ये बजाते खुद एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोजीशन है कि आपने मिस्र की और ये क्या कहते हैं शाम की, लेकिन ईरान के बारे में तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ईरानियों की जबान तो पर्शियन थी, इसमें तो कोई शक नहीं, और साद बिन अबी वक्कास अरब मगर है तो वो पर्शियन, और ये कि आपके बड़े बड़े लोग पैदा हुए,
یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ شیعہ ایسا نہیں ہے, سنی بڑے بڑے سنی امام غزالی جو ہیں وہ سب سے آرتھوڈاکس آدمی جو ہے جو پیدا ہوا ہے وہ ایران کے اندر پیدا ہوا ہے. وہ
مطلب وہ تو دیکھیں نا آپ جو ڈبیٹ کر رہے ہیں مطلب بالکل الگ ڈبیٹ ہے, مطلب یعنی کہ عربی زبان کے اثرات فارسی زبان پر کیا ہوئے اور فارسی کی جو اپنی پہلوی روایت تھی اور جو اس کی تاریخی آثار تھے اس میں کس طرح ڈائریکٹ جیسے کنورژن ہوگا اور کتنا ڈسکاؤنٹ ہوتے جائیں گے تو آپ یہ مطلب اس میں سے وہ زبان میں سے جو اسی مطلب پری اسلامک ہسٹری کا جو الفاظ ہیں خود بخود اس میں,
اور یہ امام غزالی کو کیا ڈس آن کر دیا,
اور اس میں بھی
شیعہ جب پاور میں آیا تو ڈس آن تھوڑی کر دیا امام غزالی کو, فون کرتے ہو
ارے مطلب ایران میں تو خیر یہ جو ہسٹری اگر آپ پڑھیں اس میں جریدے کا 7 نمبر ہے متروکات کے اوپر جو ہے مطلب اس میں بھی پوری ہسٹری ہے, مطلب ایران میں جو ہے ایک زمانے میں 1928 میں تھا مطلب اینٹی عرب جو ہے مطلب مومنٹ چلی بہت بڑے پیمانے پر اور عربی زبان کو خارش کرنے کے لیے اور پار دینے سے اس کے الفاظ نکالنے کے لیے, لیکن اس کے بعد کیا ہو جب مطلب ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا یہ امام خمینی کی بات اس کے بعد دوبارہ عربی زبان کا جو ہے زبردست قسم کا وہاں پر موومنٹ اسی مطلب ایران میں چل رہا ہے. یہ تو مطلب کہ وہ تو اثرات اور وہ اثرات ہیں, مطلب اب یہ دیکھیں نا ہندوستان کے اندر جو ہے مطلب جو حکمران تھے وہ کون تھے, مغل تھے نا, مغل حکمران تھے نا, تو وہ کون سی زبان بولتے تھے, ترکی بولتے تھے, تو کیا ہندوستان میں ترکی آئی, انہوں نے فارسی اختیار کی, فارسی کے بعد اردو, یعنی جو مغل شاعر تھا جو ترکی نسل سے تھا وہ اردو میں شاعری کرتا تھا,
رمیش تو اپنا
ہوتا ہی ہے کہتے ہیں کہ محلات سے زبان جو ہے وہ بازاروں میں اور کوچوں میں آتی ہے, یہ تو الٹا ہی تھا ہوا کہ کوچوں اور بازاروں کی زبان جو ہے محلات میں بولی جا رہی تھی, تو مختلف پالیٹکس ہیں جدلیاتی عمل ہے مطلب اس کے مختلف
مقامی کلچر کے ساتھ انہوں
نے ملیشیا میں
تو شرک اور بدعت کا کیا پوری بات
یہاں پہ بالکل عربی کلچر اپنی اور جو مغل جدید وغیرہ براہ راست پہنچے گا اور مقامی کلچر کی طرف انہوں نے بہت زیادہ مقامت نہیں کیا اور اپنایا نہیں ہے, ہندوستان نے اپنا لیا اس کے اثرات بہت اگر آپ کبھی اس کے اثرات نکالنا ہے مشرکانہ رسوم اور بدعت کے لیے, لیکن وہ وہاں پہ جہاں پہ خود ابھی پہنچے ملیشیا انڈونیشیا وغیرہ میں وہاں پہ ایسا نہیں ہوا زبردست ہم سے
نہیں نہیں مسئلہ یہ کہ سب کانٹیننٹ میں بھی عرب پہنچے, سب کانٹیننٹ میں عرب نہیں پہنچے گا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سوال یہ کہ ہم نے یہ سوال کب اٹھانا شروع کیا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی اصل کیا ہے, یہ تو ہم نے انگریزوں سے مار کھانے کے بعد ہم نے یہ تھیوریز ڈیولپ کی, تو غالب علمیت تو ویسٹرن تھی, تو آپ نے آپ کو تمبورا ہی نظر آئے گا نا انگریزوں کا, انگریز بہادر کے آگے تمبورا لے کے آپ نے گلے میں ڈال لیا, لیکن اگر آپ اس سے پہلے یہ تو دیکھو انگریز آنے سے پہلے 30 سال تک اورنگزیب بھی تو رول کر کے گیا تھی پورے ہندوستان میں کسی کی ضرورت کہ اسلامی سویلائزیشن کے خلاف کچھ کرتا, تو پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کلچرل پلین پر اگر وہ لینگویج اختیار کی ہوتی سسٹمیٹیکلی اور اس کو سیکھا ہوتا تو اس کے نتیجے میں آپ بڑے کنورژنس کرتے جیسا کہ آپ نے ایران کے اندر کیا یا آپ نے مصر میں کیا یا آپ نے سینٹرل افریقہ میں کیا, لیکن آپ ہندوستان میں نہیں کر پائے, اسپین میں نہیں کر پائے, آپ نہیں کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ یعنی کہ اسپین میں تو یہ ہوا کہ جو وہ جو ہوتا تھا آدمی اس کی بیوی جو ہے وہ عیسائی ہوتی تھی اسپینش بولتی تھی وہ اور وہ جو ہے تو کچھ اور کرتا تھا تو عیسائی ہی رہی وہ, تو آپ اپنی بیوی کو تک کنورٹ نہیں کر سکے, تو بتانے کا مطلب یہ کہ اگر آپ لینگویج کے پلین پر کوئی ہیلو
نہیں مطلب آپ کا ایک کہنا ہے کہ مطلب یہاں پہ ہندوستان میں جو ہے شرک اور مطلب ہندوستان میں الگ اسٹیٹ ہے نا, مطلب یعنی ہندوستان کو آپ ملیشیا یا ایران یا اس سے کیوں کر رہے ہیں, مطلب ہندوستان میں تو بالکل الگ مذہب جو ہے مطلب فوجی ہے نا جو ہندو مت ہے مطلب جس کا اپنا ایک خاص ایک اسٹرکچر ہے اور 6-7 ہزار سال کی اس کی تاریخ ہے, اور اس میں مختلف تہذیبیں ہیں، مہنجو دڑو ہے، ہڑپا ہے، یہ سب ہے نا، مطلب سارے خود پرستی کی ایک الگ جو ہے قسم ہے، پھر اس کے ساتھ الفاظ یہی، یہ کوئی عربوں کی طرح ہندوستان میں جو خود پرستی ہے یا جو ہندو مت ہے کیا وہ عربوں کی طرح ہے، عربوں کی خود پرستی کی طرح، اس کے ساتھ پورا الفاظ ہے، انصر زبان اس کے ساتھ ہے، جو دنیا کی جو ہے اسے وغیرہ ام السنہ کہا جاتا ہے اس کو، تو اس کا تو ایک الگ ہے بیک گراؤنڈ ہے، مطلب مسئلہ ہے کہ اس میں آپ نے کیا وہ تعلیم و تربیت آپ نے کی ہے، مطلب یعنی مذہب پھیلانے کی بات سے مذہب پھیلا کر کھیلے جانا ایک اور بات ہے، اور اس کی تعلیم و تربیت اور اسے قلوب کے اندر راسخ کرنا اور اس کو عملی زندگی کا ایک متحرک حصہ بنانا، یعنی جو ہے پوٹینشیل انرجی کو کائنیٹک انرجی میں، ایمان جب آپ کسی کو مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے نا صرف، مطلب تو وہ تو ایک پوٹینشیل انرجی اس کے قلب میں آ گئی، مطلب وہ کائنیٹک انرجی میں کیسے کنورٹ ہوگی، ہر کی توانائی وہ کیسے بنے گی، وہ تو تربیت اور تدریس اور تبلیغ اور اس کے ذریعے بنے گی نا، یہ جو تھے سوال کے جو تجزیے ہوئے نا، مطلب یہ سارا اختراق ہے وہ کیا ہے، مطلب سوال کا جب تجزیہ ہوا کہ جی ہم شکست کیوں کھا گئے، ہندوستان میں اتنی بڑی السنت کی شکست کیوں، جو کہا بھی رہنے کا جی اس لیے ہوئے کہ شرک و بدعت میں اتنی جو ہے شکست ہو گئی، اچھا انہوں نے کہا ان کے عشق رسالت میں اتنی شکست ہو گئی، انہوں نے آپ کا کیا مطلب، جی اصل میں یہ جو ہے یہ جو رسوم و رواج ہیں اس سے شکست ہو گئے، تو یہ تو سوال کے تجزیے ہیں، انہوں نے کہا جی انگریزوں کا استقبال کرنا چاہیے کیونکہ انگریز آئے اس سے پہلے، یہ تو ہمیں صحابیوں کو یہاں پہ نماز بھی پڑھنے دیتے تھے انگریزوں کے آنے سے، صحابیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی، سوال کے تجزیے جو ہے ٹھیک نہیں ہے، مطلب وہ کسی ایک خود کو لے کر پورے کل کے اپلائی کر دیتے ہیں، مطلب تو ہندوستان کو آپ جو ہے مطلب اگر جو ہے مطلب ملیشیا سے یا ترکی سے یا اس سے جو ہے کر رہے ہیں تو ہندوستان میں بالکل الگ جو ہے بر اعظم ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کی اپنی ایک خود پرستی کا فلسفہ ہے، تصوف وہاں پر موجود ہے، سنسکرت زبان دنیا کی رج زبانوں میں سے بلکہ کہتے ہیں ساری زبانیں اسی سے نکلی ہیں، مطلب تو اس کو تو یہاں پر تو زیادہ مسلمانوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، مطلب ٹھیک ہے محنت یہاں پر
جو میں سمجھا ان کے سوال سے یہ ہے کہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زبان آئی اور زبان میں لینگویج از سیم ٹو دا ادر کلچر اور لیٹنگ دا ادر کلچر کم، انڈیا کے کیس میں جو ہے یہ ہوا کہ کلچرل ایٹیٹیوڈس کو لیا گیا، ایران کے کیس میں کلچرل ایٹیٹیوڈس کو روک دیا گیا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں لے رہے، اور جس طرح سے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں آئی تھنک اس میں یہ کہ آپ نفوذ پذیری کو فوکس کر رہے ہیں کہ ایک لینگویج آئی اصل میں لینگویج میں نہیں اس ان قدروں نے نفوذ پذیری پائی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس زبان کے ساتھ اس کلچر کے اندر نفوذ پذیری ہے، میرے خیال سے اگر ایران کے کا موازنہ ہندوستان کے اندر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید ایران کے اوپر زیادہ ہوم ورک کیا ہوگا، زیادہ بہتر طور پر نفوذ پذیری
نہیں ہوگی قدروں کی، یہ وجہ نہیں ہے تو یار جو صاحب بھائی نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے، مطلب اس کے مطلب ظاہر ہے کیونکہ یہ لنگوسٹک کا مسئلہ ہے، ایک الگ ایشو ہے، مطلب اس میں آپ وہ دیکھ لیں، مطلب اصل بات یہ دیکھیں، مطلب آگے دیکھیں کہ زبانوں کے اوپر جتنا بھی کام ہوا ہے 18ویں صدی کے آخر سے وہ کس نے کیا ہے، عیسائی مشنریز نے کیا ہے، مطلب یعنی جو زبانوں کے بڑے ایکسپرٹس ہیں، مطلب اس کی پوری اس میں جو ہے شریرے میں جو اتروکات کی لغت ہے 300 میں، اس میں پوری ہسٹری اس میں موجود ہے، پورے اعداد و شمار موجود ہیں، اور زبانوں کے جو ماہرین تھے وہ ان سب کے خیر وہ بنیادی طور پر عیسائی مشنریز تھے، انہوں نے سروے کیا، مطلب اگر آپ ایک کتاب ہے 6 جلدوں میں سروے آف لینگویجز آف انڈیا، انہوں نے سروے کیا انڈیا کا پورا کہ انڈیا کے کس حصے میں کون سی زبان بولی جاتی، 627 زبانیں نکالی ہیں انہوں نے، کس نے نکالی ہیں، عیسائی مشنریز نے، کیوں مذہب پھیلانے کے لیے، تو اچھا پھر یہ کہ مسلمانوں کے یہاں خود موجود تھے ایسی بات نہیں، مطلب یعنی اگر آپ اس میں دیکھیں اس میں حوالے بھی موجود ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں ایسے لوگ موجود تھے جو صوفیہ وغیرہ جو 3-3 4-4 5-5 زبانیں جانتے تھے اور وہ جا کر عوام سے اسی زبان میں تبلیغ کرتے تھے، لیکن یہ کام بہت محدود پیمانے پر ہوا، ریاستی سرپرستی حاصل نہیں تھی، عیسائی سیکشنریز کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر برطانیہ سے لے کر ڈنمارک سے لے کر ناروے سے لے کر ہر ایک کی جو ہے ریاستی سرپرستی حاصل تھی ان کو، جو ہے مطلب کہ زمانے کی کو انویسٹمنٹ کرتے تھے وہ پیسے دیتے تھے، ہمارے بادشاہوں نے توجہ نہیں دی، مطلب
اور ایران کے اندر دوسرا فرق یہ ہے ہندوستان میں ایران کبھی کالونائز نہیں ہوا، کالونی نہیں بنا وہ انگریزوں کی، وہ بچے رہے اس لیے وہ اپنا کلچر بچا گئے، آپ دیکھو آپ تو 200 سال تک تو غلام رہے انگریزوں کے، انہوں نے کیا ہوگا آپ کے پاس، आपकी तारीख के साथ ईरान अपनी तारीख बचा गया तो बहुत फर्क पड़ता है कि आपका पूरा का पूरा पावर स्ट्रक्चर निकल के चला गया। हालांकि शाह ईरान वगैरह के पास गया, फिर भी वो जितना भी बदमाश था तो ईरान का ही ना, जो भी उसने अपने इस्तेमाल किए होंगे अमेरिकन हो गया होगा, अमेरिकन को किया होगा, लेकिन ईरान का जो बुनियादी बेस फूड था वो तो उलामा की गिरफ्त में रहा ना, उन्होंने बचा लिया अपने उसको। उतना करप्ट नहीं हुई ईरान की हिस्ट्री जितनी करप्ट हो पाई हिंदुस्तान की हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड पास्ट होता है, किसने किया उसको डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इवेंट्स की सिलेक्शन कैसे किया आपने और किस बुनियाद पे कर रहे हो भाई इवेंट्स की सिलेक्शन, यानी कि अगर आपने इवेंट्स की सिलेक्शन के मैकेनिज्म को क्वेश्चन ही नहीं किया और आपने कहा यही है तो वो कोई फैक्ट थोड़ी है, वो तो रेफर टू द फैक्ट है, सेलेक्टेड इवेंट्स है, उसको इस्तेमाल किया उन्होंने, उसको इस्तेमाल कर आपको बताया कि नवाब ऑफ कलात ये था और ये था और चाकार आजम ये था और ये इसमें ये मसला, इसमें ये मसला, इसमें ये मसला, यानी कि आप अपने बलोच आइडेंटिटीज के सोर्स तलाश करने के लिए आपको लंदन जाना पड़ेगा। बहुत सारे तो ऐसे सोर्स है उन्होंने यहाँ छोड़े ही नहीं, ले गए साहब यहाँ छोड़े ही नहीं। मेरे दोस्त ने एथनिसिटी पे फरहान का काम है, कितनी चीजें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटीज में भरी पड़ी, क्यों भरी पड़ी है भाई, इसलिए भरी पड़ी है कि तुमको हुकूमत करनी हो, अंग्रेज उर्दू सीख सका और तुम नहीं सीख सके उर्दू, अंग्रेज उर्दू सीख लिया, अंग्रेज उर्दू सीख के तुम पर रूल करता रहा, सीखता रहा, समझता रहा तो, और तुम इस बात पे खुश माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही कोई आदमी उर्दू में बात करता है, अरबी अंग्रेज अरबी में बात कर रहा है, फौरन आप उसको इस्लाम का सर्टिफिकेट दे, तो जो बकवास करना चाहे करें, क्या क्या मरूबियत है भाई, अंग्रेज होके उर्दू में बात की, अंग्रेज होके अरबी में बात की, इसका मतलब ये है कि आप बुनियादी तौर पर जो साइकी जनरेट हुई है वो ऐसी साइकी थी जिसने आपकी रीजनल जो बेस थी पावर बेस उसको बिल्कुल एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर, उनको बेचारों को समझा कि ये पता नहीं इंसान के बच्चे भी हैं, कौन है ये, उनका मजाक उड़ाना, उनकी तौहीन करना, उन पर लतीफे बनाना, यू नो ये करते रहे वो। हम तो उन वो सब बदमाश जो भी करते रहे अच्छा था, करते रहते वो, मजहबी कुव्वत ने क्या किया, ईरान का जो बड़ा आदमी है उसको अरबिक में लैंग्वेज नहीं आती है, बेहतरीन अरबिक आती है, बेहतरीन अरबिक बोलता है और बेहतरीन अशन भी आती है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अरबिक नहीं आती, तो वो अरबिक जब नहीं आती तुम्हें तो तुम किस बात के रिलीजियस लीडर हो,
इसको देखे ना, ये जो मतलब अमरीका का जो भी फकीर आता है पाकिस्तान के अंदर उर्दू पे उसको महारत और उबूर हासिल होता है, कंपलसरी उसके बगैर अपॉइंट नहीं हो सकते यहाँ पर। जो ये राफेल जो था जो यावलक के था जहाज में ये मतलब जो हलाक हुआ था, मतलब ये भी उर्दू के अंदर और शायरी करता है, लेकिन पाकिस्तानी साथ ही जब इससे गुफ्तगू कर रहे हैं इंटरव्यू कर रहे हैं तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात नहीं कर रहे, तो मतलब क्या क्या। और हमारे अकीर कहते हैं दुनिया के जिस मुल्क में उनको उसकी जबान आती नहीं, वो उसके लिए कंडीशन ही नहीं है, तो आप जाए कर क्या रहे हैं हम भाई, वो
आई थिंक ऑल अराउंड द ग्लोब ऐसा है कि डेलीगेशन को और बैचलर्स को इनको कुछ इलाके की जबान आती,
जबान कल्चर रिवायतें कौन सी, मतलब भाई आ रही है वो मौलाना अब्दुल अजीज फरियाबादी ने लिखा है वो अपने सफरनामे में, वो हैदराबाद दक्कन गए, अरे हैदराबाद दक्कन की लैंग्वेज अलग है, वहाँ पे कोलोकियल उनका अलग है, वहाँ उनका तलफ्फुज अलग है, वहाँ एक लफ्ज का मतलब जो किसी और खत्ते में कुछ और समझा जाता है वहाँ कुछ और है, मतलब तो वो जो है जिन साहब के यहाँ मेहमान थे मतलब तो उनका बच्चा जो है सुबह सुबह बड़े मतलब अदब और मतलब अकीदत से उनको देखने के लिए आया फजर की नमाज पढ़कर, आधा जो है खड़ा हो गया हाथ बांध कर, तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटे क्या कहना है, वो कहने चुप चुपिच,
चुपिच
तो
चुपिच
देखने में तो बड़ा गया मतलब बहुत देर, कहने फिर उन्होंने पूछा दोबारा मैंने जाए चुपिच, फिर किसी में पूछा उसने फिर यही क्या मतलब, इतनी बड़ा बदतमीज आदमी किस किस्म के लोग हैं, मतलब खैर वो चले गए तो वो पूछ रहे उनके दोस्त हैं कि यार ये तो इतने अच्छे लोग हैं और इनके खालिद इतने नेक आदमी है, तो बच्चा भी पास में नमाज पढ़ता है, मैंने तीन मरतबा पूछा कि तुम क्यों आए हो, तो मुझे कह रहे चुप कि नहीं नहीं ये नहीं कह रहे, वो कह रहे कि मैं ऐसे ही आया हूँ,
ऐसे ही आया,
तो वो उनका उनका क्या मतलब लफ्ज चुपिच ऐसी खामोखा में आया हूँ, मतलब कोई काम नहीं है मुझे, वो समझेगा ये मुझसे बदतमीजी करना, अगर तुम जबान नहीं समझोगे तो तुम्हारे दरमियान तो बड़े फसाइल पैदा हो गए, जबान की बड़ी इम्पोर्टेंस है मतलब
इंडिया में, और उसमें हैदराबाद में ये भी है, चावल अगर आप कहें मुझे चावल खाना है तो चावल का मतलब होता है कच्चे चावल, चावल को कहते हैं खाना, खाना डालो जी डाल दो, नहीं नहीं खाना भी तो डालो, डाल रहा हूँ ना ये अच्छा चावल, चावल का मतलब होता है खाना, खाना ले तो आप खाना ही तो ले रहा हूँ, रोटी खाऊंगा पहले, नहीं नहीं खाना भी तो ले, खाना चावल को अलग से जो तो अब ये आपको समझ में नहीं आता ना,
फिर कल्चर है जी, मतलब ईरान में, मतलब ईरान में रिवायत ये है कि अगर आप किसी घराने में जाएं और वो आपसे इजहार मोहब्बत करें ना, मतलब दोस्त मोहब्बत की जो अलामत होती है बड़ी खतरनाक होती है जी, आप वो एक हमारे दोस्त हैं वो गए, मतलब तो वो वहाँ पर गए तो मतलब उनकी कंपनी का पर वहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, मतलब चीज़ें तो उन्होंने बुलाया, मतलब उनके लिए खाने का मतलब ऐसा तो कंपनी के जो लोग पहले से वहाँ पहुँचे थे वो तो मेहमान नवाजी का मजा जो है चक्चे हुए थे, वो तो अब खुश हो रहे अब ये इसको पता चलेगा ये, मतलब तो उन्होंने हंसने लगे, मतलब जब वो आए बड़ा इज्जत से लेकर आए तो वो कहने तुम हंस क्यों रहे हो, मतलब वो भी पता चल जाएगा, तो वो जो है मतलब जब वो बैठे वहाँ पर तो उन्होंने जो है खुरचन निकाली और खुरचन पेश की, मतलब अब खुरचन कभी जिंदगी में खाई नहीं, जैसे तो हकीम जा रहा था पेट में दर्द होता है पड़ा हो ना पिस्ता बचपन, तो अब वो दुनिया के साथ अब वो सारे अब उसे समझ में आ गया कि हंस क्यों रहते हैं, खैर बड़ी मुश्किल से खुरचन जम गए, ईरान में ये होता है कि वो जिसको अपना समझते हैं उसकी खिदमत में खुरचन पेश करेंगे, खुरचन जो है घर वाले खाते हैं ना, उसने आपको घरवाला समझा तो खुरचन पेश किया, लेकिन कराची में आप जो खुरचन पेश करें आपको 50 गालियां देगा, गाना बड़ा बदतमीज आदमी यार मुझे अगर खुरचन गाली, मतलब अगर आप तहजीब नहीं जानते रिवायात नहीं जानते तो आप बेवकूफ हैं आप जो, मतलब आप हला के अंदर और हवा के अंदर और अजा के अंदर जो मतलब अगली जगह कर रहे हैं आप, आपको पता ही नहीं किस तहजीब में किस तारीख में बैठ दिया, मैं बता मैं जो 1975 में पहली मरतबा मैं लाहौर गया 75 में, तो फिर घर में जाओ ना मतलब वो केले खिला रहे थे, जिसको थे वो केले खिला रहे, मैंने पूछा मैंने क्या चक्कर है, मतलब उस जमाने में लाहौर में केला सबसे महंगी तरीन चीज थी, मतलब केला ऐसे जा नहीं था क्योंकि वो एक्सपोर्ट वगैरह कोई कराची फिर जाने का इंतजाम नहीं था, तो केला रेयर आता था, मतलब महीने में एक मरतबा ट्रेन आती थी उससे केला आता था, लिहाजा सबसे महंगी चीज जो थी ना लाहौर में वो केला था जो, मतलब तो वो है कि भाई कराची से मेहमान आया, कराची से मैंने समझा था नहीं बहुत दूर से आया ना, मतलब तो उन्हें कराची से मेहमान आया तो वो सबसे कीमती चीज उसको पेश की जाए, अब हम कराची में तो रोज केले खाते हैं, मतलब वहाँ केले खा के तंग हो रहे हैं, मतलब अगर आपको पता ही नहीं, मतलब इसी तरह मेरे पास एक साहब आए मेरे दोस्त हैं जतिन कराची साहब, उनके भाई उन्होंने मुझे सुन लिया कि भाई ये मेरा भाई है पहली मरतबा कराची आ रहा है, ये आधे मेरे ख्याल कोई 90 या मतलब नहीं मतलब बल्कि से ही पहले मतलब 86 की बात है, उनका भाई ये आए तो पता होता नहीं है इसका कुछ काम है तो जरा इसको आप ये देखभाल कर ली, ठीक है तो आए मेरे घर में रहे, तो चीकू उस वक्त कराची में नया नया मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था उसको मैं पेश किया चीकू, तो वो कह रहे ये क्या चीज़ है उसको पता ही नहीं है चीकू क्या चीज़ है, इसी तरह हमारे कराची वाले से बड़ा फख्र है, ये पंजाबी तो एक ठगे होते हैं, उनकी डगी हो अगर बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं पता, मतलब अगर तुम वहां जाओगे तो उनकी रेशनलिटी में बहुत सारी चीजें जो तुम उनकी नजर में जैसे किसी कौम के बारे में इस तरह के रिमार्क पास करना, किसी की लाइलमी की बुनियाद पर अपने इल्म को बरतर समझना, ठीक है मतलब ये इस्लामी तहजीब और तारीख में ये रवैया होता नहीं, मतलब नहीं है तो जानने की कोशिश करो और अगर किसी को पता है तो उससे पूछ लो, और अगर नहीं मालूम है किसी को तो उसमें कुछ तमस्कुर और जो है मतलब हंसने का कोई मौका नहीं है, मतलब ये रवैये है, मतलब आप जब तहजीब नहीं जानते हैं, आप सकाफत नहीं जानते हैं, आप उनके खाने पीने के तरीके नहीं जानते तो आप उनका पैगाम कैसे कन्वे करोगे, आप
उसके बाद कोई काम वाम नहीं कुछ मतलब इसी तरह माशरत जो है मतलब यानी माशरत बड़ी मतलब अहम चीज है मतलब एंड मुझे वाकई भी ये मतलब कि भाई ये सास और जो है मतलब ये कहू का जो फंसा है तो ये इसके ऊपर कोई शायरी में दुनिया की जो खड़ी मतलब जबाने उनमें इस शायरी में क्या है तो कुछ भी नहीं इसके अंदर जो है कश्मीरी शायरी में अगर मिली एक जो है मतलब सास के अजालिम को जो है बयान किया बाकी किसी जबान में जो कुछ भी नहीं है मतलब क्यों नहीं है भाई क्या वजह है तो मतलब ये बहुत सारे मामला हैं मतलब जो कि जबान के तनाजुर में हल होते हैं मतलब और उसे उसी तनाजुर में देखना चाहिए
जो भी चीज आप खाली छोड़ेंगे ना ऐसा नहीं होगा कि वो अनएड्रेस है उसे कोई दूसरा एड्रेस करेगा किसी दूसरे तनाजुर आपको तहरीका दे
और जो एड्रेस कहेंगे उनको पहले पहुंच गया
वो पहले पहुंच गया या ये कि वो मैदान अब उसे अपने लिए इस्तेमाल करेगा आपने नहीं इस्तेमाल किया तो वो दूसरा करेगा
देखिए हर जबान जो है उसकी जैसा कभी कोई नजरिया एक जबान के अंदर प्रोड्यूस किया गया है जैसे आपने उस नजरिए की तलाश में टू सीक दैट आइडियोलॉजी और टू सीक दैट थ्योरी यू वर सीकिंग द लैंग्वेज एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज सीखूँ उस थॉट तक पहुंचूँ उसके ज्यादा करीब तो अगर एक उसी उस लैंग्वेज में अगर एक थ्योरी डेवलप हुई है और आप उसके एंटी कुछ बनाना चाह रहे हैं तो ये इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आप पहले उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें फिर उस थ्योरी को अंडरस्टैंड करें और फिर उसके
भाई मसला ये है कि आपके लिए जब आप लैंग्वेज को एज ए ट्रेडिशन देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसमें इसकी एंटीगनिस्टिक थॉट में और क्या क्या है तो बहुत कुछ होता है आपके लिए आप वो कोई आपके सामने पे आपको कोई दूसरा पेश कर दो ये भी तो है भाई तुम्हारी तहजीब में ये कैसे भूल गए थे क्या जर्मन ट्रेडिशन के अंदर जब कांट और नीचे है जर्मन ट्रेडिशन में एक से एक पोप बैठा हुआ है एक से एक प्रीस्ट बैठा हुआ है एक से एक क्रिश्चियन बैठा हुआ है तो वो तुम उसको कैसे भूल गए और तुम ये ह्यूमन ह्यूमन तुम कहते रहते हो और ह्यूमन सेल्फ डिटरमिनेंट ऑटोनोमस तुम्हें ये पोप ने जो कहा था उसने कहा था कि ह्यूमन इज अ डीमॉन ये तुम कैसे भूल गए और ये तुम कैसे कहते हो कि सब जर्मन ये मानते हैं सब जर्मन तो नहीं मानते चुप हो जाएगा ना वो डरेगा ना हॉफ खाएगा ना तुमसे प्रॉब्लम ये है कि आप जब लैंग्वेज को मैदान खाली छोड़ते हैं तो वो मैदान वहां से इस्तेमाल होता है और वो आप कम से कम चलो बाहर की दुनिया को छोड़ो अपने मुल्क में आप कहते हो मैं लीड करूंगा लोगों के मुस्तकबिल को और उनकी जबान तुम नहीं जानते तो तुम कैसे लीड करोगे भाई किस बुनियाद पर लीड करोगे तुम जब आओ सब गंदी बातें भाई बलोच बलोच ये सब छोड़ दो पंजाबी और ये सब गंदे सब मुसलमान सब पाकिस्तान वो सोने हाँ ठीक है मौलाना इन्होंने कह दिया लिहाजा मैं ठीक हो जाता हूँ कैसे ठीक होगा उसको सोचने के लिए उसका कहाँ है फ्रेमवर्क कौन से फ्रेमवर्क में सोचेगा वो जो चीज उसे बचपन से बताई जा रही है ये है ये है ये है उसका वो क्या करेगा उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा ना वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा वो आपने उसके लिए कोई बुनियाद फराहम की कोई लिटरेचर प्रोड्यूस किया कोई आपने इंटेलिजेंशिया प्रोड्यूस किया ऐसा वैसा कुछ नहीं आपने प्रोड्यूस
और देखिए मतलब लैंग्वेज की जो हालत है आपको बताऊं बट इम्पोर्टेंट साफे है मतलब कि वो जो है कराची यूनिवर्सिटी में जो है तीन लैंग्वेजेज में अलाउड है मतलब उर्दू अंग्रेजी और सिंधी ये मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेज है कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है मतलब इसहाक मंसूरी साहब शोबे अरबी के जो है उन्होंने स्टूडेंट को अरबी का पेपर दिया इन्होंने तंजीम साजा के प्रोग्राम में बताया खुद जब अरबी का पेपर दिया तो स्टूडेंट ने उसका जवाब जो है उर्दू में दिया लैंग्वेज अरबी का पेपर है और उसका जो है आंसर जो है स्टूडेंट ने उर्दू में दिया उन्होंने फेल कर दिया मतलब उसको जो वो जो है चले गए स्टूडेंट एडवाइजर के पास स्टूडेंट यह मतलब कि आप देखें ये कराची यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज है वो उर्दू हिंदी और अंग्रेजी है यही गवर्नमेंट ऑफ सिंध की लैंग्वेजेज है हमने अगर उर्दू लैंग्वेज में इसका जवाब दिया तो क्या किया गया मतलब तो अब वो ये हुआ फैसला कि हाँ जी ये ठीक है ये इम्तिहान दे सकते हैं लिहाजा राजीव यूनिवर्सिटी ने यह मतलब ये कर दिया कि अरबी से लेकिन सिर्फ अरबी डिपार्टमेंट हमने कहा भाई इस स्कूल का इतलाक अंग्रेजी में भी करो ना मतलब अंग्रेजी में नहीं हो सकता ना क्योंकि अंग्रेजी जो मतलब आफाओं की जबान है तो आफा की जबान में तो तब्दीली नहीं हो सकती गुलाम की जबान तो बदल सकती है मतलब
इस तरीके से आप जब पढ़ाएंगे मतलब या और ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं कि जिन्होंने अरबी में पीएचडी सबमिट किए और वो पीएचडी उर्दू में लिखे हुए थे, तो क्या मतलब है इसका? जो मतलब ये इस तरह और एमफिल पीएचडी के लिए कंडीशन है हर जगह पूरी दुनिया में कि आपको अदर देन यानी जो आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है और अंग्रेजी तो जाहिर है चूंकि एक कॉमन लैंग्वेज है, अदर देन इट एक आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ये सिखावा होता है रूल्स के अंदर, अमल वाल कुछ नहीं होता। मतलब लोगों को तो उर्दू भी नहीं आती, अंग्रेजी तो खैर छोड़ दें, मतलब या कोई और थर्ड लैंग्वेज है उर्दू भी नहीं आती। ये तो उन तबकात का हाल है जो पढ़े लिखे हैं, मतलब यानी जो समझे जाते हैं कि ये सोसाइटी को चला रहे हैं, उनका ये हाल है जो है मतलब, तो किसी और का जो है इसमें सवाल ही है, मतलब लैंग्वेज के साथ तो इस सूरत हाल है इस पर, मतलब लैंग्वेज आपको ना वो आती है ना वो आती है ना वो आती है, तो आप करेंगे क्या जो मतलब, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। घरों के अंदर जो मतलब लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती, बच्चे को आप टीवी के सामने बिठा देते हैं,
घर में माँ बाप
उर्दू नहीं बोलते, मतलब उर्दू नहीं आती लोगों
अपने बच्चों के साथ, वो एक ही एज के सब इंग्लिश में बात करते, पूरा फैमिली इंग्लिश में बात करने लगे, बच्चा पैदा हो गया रात नहीं करता, पूरी फैमिली अंग्रेजी में बात करनी शुरू हो गई बच्चे के पैदा होते, हमारा बच्चा है तो मैं अपने बच्चे के साथ उर्दू में बात करता और मेरी सास सुसर पंजाबी में भी बात कई जबाने वो देखता है, लेकिन ये क्या अपनी नेटिव, तो मेरी बीवी भी कभी कभार कहती है भाई तुम्हारे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है बच्चे को अंग्रेज, मैंने कहा भाई आ जाएगी उसको प्रॉब्लम नहीं, तो वो अजीब गरीब बच्चा वो जो बच्चे जिससे पूरी फैमिली जा रहे वो अचानक से अंग्रेजी आ जाएगी क्या उनको, तो उस दिन वो कह रहा है लोग मम्मी अरशद इज ड्रिंकिंग सिगरेट अरशद इज ड्रिंकिंग सिगरेट, तो वो जो है ये क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप जो आपकी मदर टंग है वो बोलो ना उसके साथ, जुल्म कर रहे हो आप बच्चे के साथ, आप बच्चे के साथ जुल्म कर रहे हो, और ये अंग्रेजी भी सीख ही लेगा बोल लेगा ठीक है, अब हम अपना पूरा पैटर्न ऑफ लाइफ तब्दील कर दें क्या, पूरा पैटर्न ऑफ लाइफ तब्दील कर दो, मैं अपने पूरे खानदान से बोलूँ भाई मेरे बाप को तो नहीं आती अंग्रेजी, मेरे भाइयों को नहीं आती उसके बच्चों को आती है, तो मैं पूरी अपनी जिंदगी बदल दूं क्या अंग्रेजी के मेरा बच्चा अंग्रेजी फर बोलने लगे, बोल लेगा नहीं भी बोलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो बताने का मतलब ये कि लोग अपना पैटर्न ऑफ लाइफ तब्दील कर देते हैं।
और अमेरिकन एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसी में जो लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, मतलब मेरा एक दोस्त है डॉक्टर है, मतलब वो गया, मतलब उसकी बड़ी डिग्रियां विग्रियां थी, उसने इंटरव्यू दिया, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसके बराबर एक जो है मतलब बिल्कुल एक अनपढ़ अहल सा आदमी था वो खड़ा हुआ था जिसको अंग्रेजी नहीं आती थी, उसने पूछा तो उसने कहा कि भाई हम तो उर्दू में बात करते हैं पंजाबी में जो मतलब वो ठेक रहा है वो ट्रांसलेटर को जाए, तो जब भी एकदम क्यों जा रहे हो करता है ऐसी घूमने फिरने के लिए, अम्मा जी क्या कर है तो नहीं जाओगे, उन्होंने वो ऐसी अनु जगह पर कौन रहेगा जहाँ हमारी जबानी कोई नहीं समझता, वो मुझे आकर कहने लगा कि यार मैं FRCS हूँ और मुझको सारों ने नहीं दिया, मैंने तुम जाके वहां पर घुसोगे कि आ जाएगा वापस, मैंने उसको दे दिया और मैं पहचान लिया और तुमको नहीं दिया,
मैंने मेरे भाई के साथ हुआ अमरीका, जब उसका आर्कनसास स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ इंटरव्यू के लिए गया, तो हमारा उसका दोस्त था वो था हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, वो प्रोफेशनली धोबी था, गधे गाड़ी की नहीं धोबी आते, तो वो बच्चा था तो फिर वो आता था मोहल्ले में सक्सेस की धोते हुए क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, तो वो भी तो उसका पासपोर्ट था, उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा जब ये फॉर्म अपना जमा कराया जाएगा, उन्होंने कहा मैं भी अप्लाई करूँ, कुछ भी नहीं कोई ना I-20 कुछ उन्होंने जो भी अप्लाई कर दिया, तो इनका इंटरव्यू था उनका भी इंटरव्यू था, तो इनका इंटरव्यू किया इन्होंने कुछ बोला ये उनको रिजेक्ट कर दिया उनसे कहा कि भाई तुम तो कहा भाई तुम क्या करोगे, तो ना I-20 है ना कुछ, तो इंटरप्रेटर के थ्रू, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जाऊंगा वहां पे, बोले तो क्या करोगे वहां पे, बोले मैं तो धोबी हूँ कपड़े धोता हूँ वहां भी कपड़े धोऊंगा, तो वहां पे ना मशीन में कपड़े धोते हैं बहुत फायदा होगा, ठीक है 5 साल का मल्टीपल दे दीजिए तो आगे दे दीजिए, अभी थोड़े अर्से पहले आया था काफी अर्से हो गया बल्कि फर अंग्रेजी बोलते हैं। देखते नहीं पसंद की, और पता नहीं गोरा भी बहुत हो गया, बाल भी बड़े जबरदस्त रख लिया, और मुस्तकिल इंग्लिश में बात की उसने, उर्दू में कोई बात नहीं, इंग्लिश में बात कर रहा, क्योंकि जाहिर है कि उसका भी एक था ना कि भाई ये सब अंग्रेजी बोलते हैं और मैं अंग्रेजी, और उसने पता नहीं तीन चार टैक्सियां खरीद के लड़कों को अपॉइंटमेंट, उसने मेरे भाई से कह रहा था हाँ तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी इंतजाम करो लेकिन ये अब ठीक नहीं है, मैं भी सोच रहा हूँ वापस आ जाऊँ, इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है वहां पर ये वो, और उम्र भी अब ज्यादा हो गई है, और ये क्या अब है ना ठंड लगती है ये वो फला पानी वानी नहीं होता, तो अब यहाँ आ जाऊंगा, बच्चे भी बड़े हो गए तो वो चला गया। तो बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आप लैंग्वेज को एथनिसिटी को अलग नहीं कर सकते, आप जब अपनी किसी इंसान की अपनी जबान में बात करते हैं तो उससे आपसे मोहब्बत पैदा होती है, मोहब्बत का ताल्लुक पैदा होता है, मोहब्बत में इंसान अपनी मादरी जबान बोलना शुरू होता है, उसने ताकतवर जज्बे को आपने बिल्कुल अनअटेंडेड छोड़ दिया, यानी कि वो दुआ जो आप अपनी मादरी जबान में करते हो कैसी स्ट्रेंथ होती है, कुत होती है ना उसके अंदर बड़ी जबरदस्त, उसके अंदर लफ्ज भी होता है जज्बा भी होता है, और आपको ये यकीन भी होता है खुदा में समझ जाएगी, खुदा ये समझेगा जो मैं कह रहा हूँ उसे, हालांकि पूरी नमाज में तुमने दुआ ही तो की है, पूरी नमाज दुआ ही तो है वो। उसके बाद फिर आखिर में कहता हूँ अब ये असल काम अब मैं कर रहा हूँ, वो सब ऐसे सब नहीं क्या अब असल बात तो अब मैं कर रहा हूँ, तो असल बात तो इसलिए असल बात तो मैं अपनी जबान में करूँगा, असल बात अब शुरू वो सब जो था वो एक एक्टिविटी थी मैकेनिकल एक्टिविटी वो मैं कर रहा था, अब असल में मैं छोटी छोटी जगह से मैं दुआ बहुत मंदिर है हमारे दोस्त पलंग जब तक उनकी नमाज खत्म हो जाती और सदियों में उनकी दुआ खत्म होती है, बहुत जल्दी उनकी जुम्मे की नमाज खत्म हो जाती है उसके बाद वो सबसे आंखें में गए दुआ उनकी खत्म ही नहीं हो रही, दुआ बहुत लंबी मांग लगा मेरा नहीं इतना आते हैं ना कि ज्यादा कोई दूसरी जगह वो सूरत भी करते जो सबसे छोटी अवेलेबल सूरत, बल्कि एक बार पूछ रहे थे कि इससे भी अगर मैं सिर्फ एक आयत पढ़ा मुझे समझ तीन आए थे तो हो चलो ठीक है देखिए वरना एक आए अली इस्लाम में ताकि दुआ के लिए टाइम ज्यादा मिले, तो असल काम वो होता है जो मैं अपनी जबान में करता हूँ, बाकी तो मैंने क्या बोला मुझे पता ही नहीं, ये मैं और वो रिलेट हो क्योंकि अब मैं असल तो मेरा अपना असल वजूद तो अब इजहार करेगा, ये तो बस लगे बदली चीजें जो मैंने बोल दी, ये सोचता है इंसान का दिमाग, आपने उसकी इस कुव्वत को इस्तेमाल ही नहीं करना, उसे करो तुम भूल जाओ तुम सिंधी हो,
मतलब कि जो इंट्यूशन होता है जो एक तरह से प्रतिनिधि जो होती है कल्चर के अंदर एक रिलीजन की एट द बिगिनिंग में वो रिलीजन उसकी लैंग्वेज में उस कल्चर को एड्रेस करता है तो एज यू सेड की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, डीप रूटेडनेस जो है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, मगर उसके बाद हम वहां से एक रिबॉन्ड देखते हैं रिबॉन्ड यानी ये रिएक्शन देखते हैं, वो ये कि वो पहले मनाजात के अंदर जो है वो अपनी जबान को इस्तेमाल करते हैं एज यू सेड की बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी होती है, लेकिन द पैसेज ऑफ टाइम उसकी ख्वाहिश होती है उसकी तमन्ना होती है कि वो इस जबान से ज्यादा मोतबर ज्यादा अच्छे तरीके से उस जबान में जिसका प्रोटेक्ट है वो करें, जब उसकी इरफानी सतह बुलंद होती है बेहतर होता है तो फिर वो
देखो हमेशा ये याद रखो कि जो बड़े लोग होते हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ असल में जो कुव्वत होती है वो क्रिटिकल मास जो मासेस की बात होती है क्रिटिकल मास की नहीं, जो स्पीयर हेड्स होते हैं ना उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आम आदमी थोड़ी उसके पास वहां वो तो बेचारा वो है मोची है या वो दूध वाला है उससे तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ये सब कुछ पड़े, वो नहीं पड़ेगा, वो तो अपना काम करता है दूध बेचता है वो मुसलमान भी है, वो नौकरी भी करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है, लेकिन तुम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते वो एकेडेमिक प्लेन पे जाकर इस्लाम को समझेगा, ना उससे डिमांड की जाती है ना उससे एक्सपेक्ट। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उस आदमी को आपने अनएड्रेस छोड़ा तो वो कोई दूसरा उसको ले उड़ेगा, और आप एकेडेमिक प्लेन पर रिलीजन को प्रैक्टिस कर कितने लोग करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्लेन पे कितने लोग करते हैं, और आम रिचुअल्स के प्लेन पे कितने लोग करते हैं, और आम जिंदगी में जो जिंदगी को गुजार रहे हैं उसमें कितने लोग करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो असल लोग होते हैं ना, आप देखें मास मोबिलाइजेशन नहीं हुई, आपने 1857 के बाद एक बड़ी मास मोबिलाइजेशन नहीं की सब कॉन्टिनेंट में, ईरान ने की, यानी कि ईरानियों ने दरअसल जो किया वो ये किया कि रिलीजन की बुनियाद पर मास मोबिलाइजेशन की, और दूसरा जो कामयाब तजर्बा हुआ वो टर्की में हुआ, उन्होंने भी रिलीजन की बुनियाद पे मास मोबिलाइजेशन की, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, क्यों, उलमा का वो जोर नहीं है वहां पर जैसा ईरान के अंदर था। पाकिस्तान के अंदर भी किसी न किसी सतह पर उलमा का एहतराम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईरान में और टर्की के मुकाबले में पाकिस्तान में महाज इसलिए मुश्किल है कि यहाँ कई जबानें, वहां पर एक ही टर्किश लैंग्वेज है, एक ही लैंग्वेज थी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक ही रेस थी, यहाँ कई रेसेस हैं, तो आपका मैदान ज्यादा डिफिकल्ट है। ईरान के अंदर इतना सक्सेसफुल इनकलाब इसलिए है कि लोग समझते हैं सब, पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है उर्दू, उर्दू समझ जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो उलमा वो तो फ्रॉम देयर पार्ट है जो कि आम मासेस हैं उनका, लेकिन ऊपर की जो स्पीयर हेड्स हैं उनका, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी इसलिए मास मोबिलाइजेशन नहीं की। मास मोबिलाइजेशन होती है किसी ऐसे जज्बे की बुनियाद पर जो आम आदमी के दिल को लगे, तो वो या तो मादी मफादात होते हैं कि रोटी कपड़ा मकान ये ना इस तरह की, तो ने की ना मास मोबिलाइजेशन हुई जबरदस्त मास मोबिलाइजेशन, या मुजीब ने की मास मोबिलाइजेशन जबान की बुनियाद पे की, और जहां पर भी पॉपुलर अपराइजिंग हुई लैंग्वेज एथनोसेंट्रिक
यहाँ पर जो हुआ उसको क्या
कहेगा
क्रिटिकल
मैसेज,
यानी कि
हवास में क्या। देखो मसला ये था कि जो उंगलियों के पास से जब पावर जाने लगी तो अब्बासियों ने क्या किया, अब्बासियों ने दो काम किया, अब्बासियों ने एक काम तो ये किया उन्होंने कहा हम भी अहले बैत हैं और अलवीज भी अहले बैत हैं, तो और ये तो अहले बैत नहीं है तो ये आ गए, ये वो मार पिटाई भी कर रहे हैं और ये वो, तो ये हम हैं लेजिटिमेट होगा। तो पहले तो उन्होंने अलवीज लड़ते रहे और अब्बासी बैठे रहे आराम से, अब्बासी एक जंग नहीं लड़ी उन्होंने उंगलियों के इलाज, एक बार तलवार नहीं उठाई अब्बासी, और जब उन्होंने देखा उंगली कमजोर हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी अब्बास की औलाद है और हम भी हाशमीज हैं और हम रूल करेंगे, तो अलवीज मार लड़ लड़ के कमजोर हुए रहे थे, अब्बासियों का तो बिल्कुल खून बहा ही नहीं था, वो तो बिल्कुल बैठे हुए थे आराम से, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने के बाद उन्होंने ईरान में को भी अपने साथ मिला लिया, यानी कि नॉन अरब वर्ल्ड को भी मिलाया, और दो काम किए उन्होंने, अरब होगा कि हम अरब हैं और हाशमी भी हैं और बहुत पढ़े लिखे थे, शुरू के तीन चार तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे अब्बासी खलीफा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम देखो अरब होने के बावजूद भी नॉन अरब्स को अपने साथ मिला के चलाएंगे, चलाया और चला के दिखाया उन्होंने। तो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने तीन सतहों के ऊपर काम किया, एक उन्होंने कहा कि हम कबीले की सतह पर हाशमी हैं, हम अहले बैत हैं, हम हजरत अब्बास की औलाद से, एक हजरत अली की औलाद से हजरत बैत, तो दोनों का स्पीयर है तो एक ही है, तो रूट तो एक ही है, तो हम रिश्तेदार हैं, हम भाई हैं इनके, हम इनके कोई दुश्मन थोड़ी है। और फिर बाद अब्बासी खलीफाओं ने इमाम जाफर सादिक को, इमाम बाकर को, इमाम जाफर सादिक को कहा था ना कि मैं बनाऊंगा अपने बाद खलीफा,
इमाम आजम ने
कहा। अच्छा तो बारह एक, तो मामून ने ये भी कहा, तो वो क्या हमारे रिश्तेदार हैं ये, तो दो तरफ से उन्होंने कहते हैं, दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल रिलेटिवली एज कम्पेयर टू उबैयाज, तो उबैयाज ने, लेकिन जैसा रूल उमवियों ने किया सेंट्रलाइज था, अब बात ही नहीं कर सकते। तो अब ये हमारे पास कोई इसकी दलील नहीं कि अब्बासियों से और क्या क्या मिस्टेक्स हुई। हो सकता है कि उनके पास ये सलाहियत नहीं, जैसे सेंट्रल अफ्रीका अब्बासियों के पास नहीं रहा, फातिमियों के पास चला गया, और स्पेन जो था वो उमवियों के पास रहा, और बाकी जो इलाका था वो फिर अब्बासी आशे में कमजोर हुए, तो सेंट्रल अफ्रीका से उबैदुल्ला का जो पोता था वो था आगे
तो स्पेन में
नहीं, 700 years इज मोर देन इन, 700 साल रूल किया स्पेन से मुसलमानों, तो बताने का मतलब ये नहीं की, इसलिए नहीं की उन्होंने मजहब को बुनियाद नहीं बनाया, मजहब को बुनियाद नहीं बनाया, हुकूमत कर रहे थे, बादशाह थे वो। अपनी बीवी को जो आदमी कन्वर्ट नहीं कर सके, किस सतह की मजहबी है उसकी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फखर अजाबेला और रॉड्रिक, जिन्होंने उस वक्त बहुत पावरफुल हो गए, और आप जो थे वो बड़े वीक थे। तो बताने का मतलब ये कि आपने स्पेन को, सब लोग आइडियलाइज करते हैं स्पेन में, तो मुसलमानों की स्ट्रेटेजी सबसे कमजोर है इस्लामी इल्मियत की सतह के ऊपर। आपने साइंस और अदब और लिटरेचर को जो प्रोड्यूस किया, जो भी आपने केमिस्ट प्रोड्यूस किए, मैथमेटिशियंस प्रोड्यूस किए, आपने कन्वर्जन ही नहीं किया। कन्वर्जन आप करते तो आप क्या स्पेन की सिविलाइजेशन उससे कम, पर्शियन सिविलाइजेशन से क्या ताकतवर थी, कमजोर थी, आप इसको कन्वर्ट करते तो उससे ज्यादा जुल्म करते थे तो जो क्रिश्चियन बादशाह थे। मगर ये कि वो आप नहीं कर सकते, तो हमने स्पेन के अंदर सही काम नहीं किया। बादशाह अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, आम आदमी क्रिश्चियन है वो अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप जो है केमिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ये प्रोड्यूस कर रहे हो। ईरान में हर तरह के लोग पैदा होते
हैं।
इंडिया के अंदर आपने फिर भी कुछ कामयाबी हासिल की है, आ रहे 23 करोड़ मुसलमान तो है ना, यानी कि 23 करोड़ कम तो नहीं होते, लेकिन ये कि जाहिर है कि उसमें भी आप बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। अब आप कहें कि भाई ईरान जब आपने कैप्चर किया या मिस्र जब कैप्चर किया, तो कुरून उला के सहाबा मौजूद थे, तो उनके किरदार के मुकाबले में शहाबुद्दीन मोहम्मद और यानी कि पठान जब आए हैं तो कन्वर्जन हुए, और जब मुगल आए तो कन्वर्जन नहीं हुए। मुगलों के दौर में सिर्फ औरंगजेब के जमाने में बड़े कन्वर्जन हुए, या बाबर के जमाने में बाकी तो कोई कन्वर्जन हुआ, और ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जब आया तब कन्वर्जन हुए, शेरशाह सूरी आया तो कन्वर्जन हुए, ये क्या कहते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का तो जाहिर है रिलीजियस ओरिएंटेशन था, शेरशाह सूरी के और बड़े थे कि वो लिंक करना चाहता था उसको ले जाकर सल्तनत के साथ, खलीफा खिलाफत के साथ लिंक करने का उसका प्लान था, अल्लाह ने उसको मौका नहीं दिया।
ये जाएंगे इस्लामी तहरीकों ने जो है मतलब कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोशिश नहीं की, मतलब तो ये कल्चरल और इसके ऊपर कोई मास मूवमेंट या मोबिलाइजेशन नहीं है, तो ये कैसे कर सकते हैं इस हाल के तौर पर, जो मतलब हम ये देखते हैं कि इस्लामी उन असल अजाहिद जो है मतलब ईसाइत यहूदियत और इस्लाम, इन तीनों के अंदर जो है उसकी रिवायत नहीं है, ड्रामे की रिवायत जो है तीनों मतलब तहजीबों के अंदर कभी भी नहीं रही, गुनान में भी इतनी जाहिर है वो अपना तनमियात को उनका अपना जो है सिलसिला था। तो अभी के लोगों ने मतलब ग्यारह के जमाने में इस्लाम जमे तलबा की जहां जहां तलबा यूनियन होती थी वहां पर वो तालीम बालगान को जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि उसमें औरत की आवाज़ एक ही मरतब आती है, पीछे से कोई औरत बोलती है कि जुमला बस के अलावा औरत उसमें नहीं, लिहाजा वो हर जगह अभी तक जब उन्हें मौका मिलता है तो वो उसको एक कल्चरल एक्टिविटी के तौर पर जो है ड्रामे को जो है ये खालिस एक इस्लामी तहजीब और तारीख का शाहकार पेश कर रहे हैं मतलब इस तरीके से, मतलब कि यानी कोई फिर वो रफ्ता रफ्ता जो है मतलब
कन्वर्जन हुआ अभी जैसे जमात इस्लामी ने मौलाना मौदूदी के ऊपर जो है दस्तावेज तैयार की जिसमें एक आदमी को टोपी उड़ाकर और जो है मतलब शेरवानी पहनाकर बताया गया मौलाना मौदूदी, हालांकि मौलाना मौदूदी ने फिल्म के ऊपर और ड्रामे के ऊपर तो साफ साफ लिखा है कि इसमें तो एक आदमी की पर्सनैलिटी जो है फजू हो जाती है, वो थर्ड वर्ल्ड थर्ड ऑर्डर के अंदर चला जाता है अपनी शख्सियत को छोड़कर, या तो इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं, तो वो कल्चर पॉलिसी इस तरीके में ट्रांसफॉर्म हो रही है कि वो उससे समझते हैं कि इससे जो है कोई मौलाना की जिंदगी को देख कर लोग जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब तो क्या मतलब कल्चर पॉलिसी अगर हो तो किस किस्म की पॉलिसी हो क्या हो, मतलब
पहली बात यही कि आप ऐसे लोग करें जो लोगों से उनकी जबान में गुफ्तगू करें, कल्चर कैन नॉट बी शोन इट कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू पार्टिसिपेशन इन योर रियल लाइफ सिचुएशन, कल्चर को दिखाया जा रहा है तमाशा थोड़ी है कल्चर, पहली कोई कल्चर तमाशा थोड़ी होता है टीवी पे तुम दिखा दो उसको, ये हमारी तहजीब अजीब क्या जाएगा था आप कह रहे हो शादी में इसका नाच रहे हैं क्या खा रहे हैं, ये हमारी तहजीब है, तो तहजीब इस पर रिड्यूस कर दो, तहजीब जो है वो एक्सपीरियंस होती है लाइफ वर्ल्ड के अंदर और उसके लिए आपका सबसे बड़ा मीडियम होता है लैंग्वेज, कुछ करने की आप लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, आप तो वो फनून लतीफा के मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं जो सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, इसमें क्या आपने किया, आपने कितने ऐसे लोग पैदा किए हैं जो चार जबानें आपके मुल्क की जानते हैं और उनसे उनकी जबान में गुफ्तगू करते हैं और उस पूरी रीजनल लैंग्वेज के डिस्कोर्स को इस्लामाइज कर दें, ये स्ट्रैटेजी है आप ये करो, इसमें कोई टोपे थोड़ी चला नहीं, तबलीगी जमात इतनी सक्सेसफुल क्यों है, इसलिए कि वो जो तबलीगी जमात का जो बंदा पकड़ती है ना वो जो वो होती है क्या कहते हैं गश्त जो होता है, गश्त कराने के लिए क्या करते हैं मोहल्ले का लड़का पकड़ते हैं, मोहल्ले का भी वो पकड़ते हैं जरा बदमाश टाइप का लग रहा होता है ना, आप जो है ना लोग अब वो इतना बदमाश जो होता है देखेंगे वो तो पहले उसको देख के उनको सख्त गुस्सा आ जाता है कि ये हम आया है हमें बताने, मैं नहीं बताऊंगी हजरत साहब बता वो खड़ा रहता है तो उसमें शराफत है ना कि उससे कह रहे आग रुक जाए, मुझे है ना पेट में बड़ा सख्त डर गया तो मैं बस जा रहा हूँ, नहीं आप बैठ जाए जरा रेस्ट करा के चले जाए देखें भाई ये कर वो सब बहुत सारे कहते हैं नहीं मेरे पेट में बहुत दर्द है मैं बहुत जाना है डॉक्टर के पास तो आमतौर पर सब चले जाते हैं, एक जो बहुत ही हिम्मत जिसमें कम होती है कि मैं किस तरह इनको झूठ बोलूं मस्जिद के अंदर खड़े हो गए झूठ उमूमन जो है तबलीग जमात वाले जैसे मुझे पड़ जाए मस्जिद से बाहर निकल के खड़ा हो जाता है क्योंकि मस्जिद से बाहर निकल के झूठ बोल रहा है सब दर्द है और ये और वो थोड़ी देर क्रिकेट खेल रहा है तो कहते वहां पर पेट ठीक दर्द हो ठीक हो, मैंने कहा हाँ वो मैंने खाई कारमीना सही है तो वो कह चले फिर मगरिब में मिलेंगे आपको मगरिबी नाम घर पर तो वो जो बेचारा शरीफ आदमी है जो रुक गया उसको लेके जाता है वो क्या करता है वो लेके जाता है सब लोगों के घरों में, तो एक आदमी जब लोगों के सामने जाके खड़ा होता है कि ये आपको बता रहे हैं अच्छी बातें तो उसकी जो पोजीशन होती है वो इस्तेमाल होनी शुरू हो जाती तो फिर वो खुद ही अपने मुंह से उगल जाता है हजरत साहब देखें मेरी तो कोई मोहल्ले में इज्जत नहीं है तो आप मुझे तो जाने थे, बोले अच्छा आप ये उससे कहलवाते हैं जो वो कह देता है कहते हैं इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि तीन दिन लगाएं आप देखें अपने इलाके में लोग आपको दूसरे इलाके में जाके आप बात करेंगे तो वो कह रहे हैं मुझे नहीं अभी मेरी तबीयत खराब है ये है अम्मी मेरी बूढ़ी माँ बीमार है उनको फालिज हो गया जो कुछ उनके साथ हो सकता है वो कर दे कहता है अच्छा चले ठीक है भाई जब तो उसके बाद वो ले आते निकाल के ले आते और उस आदमी को इस्तेमाल करते हैं जो वो जबान जानता है वही करता है गुफ्तगू वही करता है वो एक ही बात करते हैं सब एक ही बात है भाई दोस्तों दुनिया की जिंदगी जो है वो चंदों का जिंदगी और अल्लाह बहुत बड़े हैं और अल्लाह हर चीज का करने वाले हैं और अल्लाह कामयाबियों नाकामियों से कामयाबियां निकालते हैं सब और कभी कभार मुझे भी खड़ा कर देते थे तो कहते वहां पर कोई फलसफा नहीं बोलेगा फिर कोई जो आप है ना वही बोलते रहे जो भाई बोल रहे हैं वही बोले कुछ और नहीं बोले फिर लोगों के दिमाग समझ में नहीं आएगा वो गुजर जाए तो जो ये तीन चार जुमले होते ये बोले तो फिर कोशिश करेंगे ना भाई सर जी जी सब कोशिश करें। तो वो सक्सेसफुल क्यों है, इसलिए वो रीजनली करते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल है। वो आप ही में से आदमी खड़ा करके कहते हैं आप बताओ, क्या बताओ, सिर्फ वही बातें बताओ, कोई ऐसी लंबी चौड़ी कहानी बताने की जरूरत नहीं, बस ये बताओ अल्लाह मियां सबसे बड़े हैं और सब अल्लाह मियां थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है तो सोचना कि अल्लाह मियां कैसे करते हैं, मेटाफिजिक्स है तो इसको मालूम भी थोड़ी बता दो, बस सब अल्लाह मियां करते हैं और ये अमरीका अमरीका भी नहीं करता और ये सब अल्लाह मियां करते हैं और अल्लाह मियां की मदद करोगे तो अल्लाह मियां आपकी मदद करेगा। सब भाई कोशिश करेंगे ना, हाँ सब कोशिश करेंगे, तो वो सक्सेसफुल
मकामी आदमी है सर, बहुत आदमी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और इसकी मैं आपको मिसाल दूँ, ये कराची यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे तीन चार मसाजिद हैं लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी तबलीगी जमात का कोई नज़म कायम नहीं, हालांकि हर दो तीन महीने के बाद आती है यहाँ पर तबलीगी जमातें मतलब, और ठहर भी हैं मस्जिद में भी हफ्ता भर भी ठहरी लेकिन अभी तक इनका नज़म कायम नहीं हुआ, उसकी वजह है इनको अभी तक इस इलाके से मकामी आबादी से कोई आदमी इनको नहीं मिल सका अभी तक भी है मतलब, या वो मुस्तकिल अभी आए थे इस बार हमारी मस्जिद में आए थे मतलब, तो उनसे मैं बैठा हुआ, मैंने उनसे कहा कि मैंने भाई आपने इसको गौर नहीं किया कि आप इतने अच्छे से यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े वो उत्सुक कर रहे थे भाई वो आ रहे नहीं है, कहने वो हमारी मस्जिद में आ रहे हैं, वहाँ जैसे ही मतलब खत्म होती ना मतलब दुआ खत्म होती लोग निकल जाते हैं, मैं वो ठहरते नहीं मतलब क्या मतलब है मतलब, वो ऐसे अपनी वो गुफ्तगू कर रहे थे बड़े सदमे से कि अब पता नहीं हम यहाँ पे हमारा आठवीं जमात आई लेकिन कोई आदमी एक आदमी भी जो है हमारे जो है हाथ में नहीं आ रहा, किसी तरह बड़ी मस्जिद इसमें भी इनका कदम जो है कायम नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि भाई आप ये जो इमाम साहब हैं जो इस मस्जिद के ये तो बड़ा अजबी घराना है, कहने नहीं नहीं साहब वो उनकी हाथ ना करें वो तो नहीं आते अभी तक उनको मकामी आदमी नहीं मिला यहाँ से, ये चार पांच साजिद हैं तो उनमें से कोई भी मकामी आदमी नहीं मिला, लिहाजा उनका कदम कायम नहीं हो सका यहाँ पर, जब तक आप मकामी सतह पर जो है मतलब कदम नहीं लगाएंगे और वहां से जो है मतलब आदमी को नहीं लेंगे तो वो नहीं होगा, मतलब इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारे जो मतलब ना तबलीग वगैरह का काम है वो क्या है, मतलब खवातीन में भी आप देखें अक्सर वो जाती दूसरे इलाके में, अपने इलाके में क्यों नहीं, अपने खानदान में क्यों नहीं, क्योंकि अपने खानदान में और अपने इलाके में तो आप निशाने सवाल होते हैं ना, मतलब सौ चीजें होती है मतलब
फौरन उनको पता होता है ना क्या क्या बदमाशी करते हैं, फौरन गिरना शुरू कर देते, देखो तुम ये करते हो और ये करते हो, ये करते हो और ये करते हो और ये करते हो, तो हाँ ये सब मैं करता हूँ, तुम ये क्या अल्लाह रसूल की बातें कर रहा है, अगर आप चुप हो जाओगे तो आप क्या कर सकते, जो स्ट्रेंथ होती है अंदर का आदमी, और ये जब बुलाते हैं तो लाखों लोग जमा हो जाते हैं, लाखों लोग जमा हर जबान बोल रहे होते हैं, पठान भी पश्तो भी बोल रहे होते हैं, पंजाबी बोल रहे होते हैं, सिंधी बोल रहे होते हैं, ब्राह्मी बोल रहे होते हैं, बलोची बोल रहे हर जबान बोल रहे होते हैं, तो ये कैसे वो स्ट्रेंथ पैदा करते हैं, और वो अपनी फैमिली को तब्दील करता है सबसे पहले आगे, फैमिली को तब्दील करता है, बेटा होगा बाप होगा भाई होगा पूरी फैमिली को तब्दील कर देगा, क्या करता है वो, तो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, तो मसला ये है कि आप चीजों को कल्चरली कल्चरल स्ट्रेंथ को पहचानते नहीं हैं, और उसको जब तक आप नहीं पहचानेंगे उस वक्त तक मैदान खुला रहेगा।